ओम शांति। हम सबके बीच में आज डॉक्टर सतीश गुप्ता जी पधारे हैं। आप मेडिकली प्रोफेशन से आप डॉक्टर हैं, 28 साल से आप इस ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 18 वर्षों से आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। मधुबन में ही 18 वर्षों से आप रहते हैं और उनकी बेसिक एम जीवन को डेडिकेट करने की यही रही कि कैसे जो दुनिया में हार्ट डिजीजेस बहुत ज्यादा फैल रही हैं, बहुतों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है और हार्ट फेलियर्स हो जाते हैं, जिसका रीजन होता है हार्ट में ब्लॉकेजेस, आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो उसी की रिसर्च करने के लिए आज से 18 वर्ष पूर्व आप माउंट आबू मधुबन में आए और इसकी कंटिन्यूस रिसर्च करके कई सफल प्रोग्राम्स, कैड के नाम से आप जानते होंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, इसके नाम से उन्होंने कई सफल कार्यक्रम किए, जिसमें हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट हैं अब्दुल कलाम जी, उनके भी, वो भी यहाँ एक बार उनका भी पूरा दिल्ली से वीडियो चैटिंग हुआ था इसी कार्यक्रम के लिए। तो ये सफल प्रयास करते करते अब 2011 में ये प्रोग्राम जो इंडियन हार्ट जर्नल उसमें पब्लिश हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है कि और इसको भी ये विश्वव्यापी मान्यता है अभी कि मेडिटेशन, मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज, इन चारों के कॉम्बिनेशन से कैसे आर्टरीज खोली जा सकती हैं और बाईपास सर्जरीज और एंजियोप्लास्ट रोके जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके पास लगभग 5000 डॉक्यूमेंटेड लोग हैं कि जो आपके पास आए जिनके आर्टरीज खुल गई इस प्रक्रिया से। और अभी भी अगर आप माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल नाम से नेट पर गूगल में जाकर के आप देखेंगे तो आप पूरा इसका डिटेल्स पा सकते हैं। तो आज भ्राता जी विशेष रूप से जो बाबा कहते हैं मेडिटेशन के बारे में, ज्वालामुखी योग के बारे में, उस फाइनल स्टेज के बारे में जिससे विकर्म दग्ध होते हैं, जिस स्थिति को हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जो कहीं ना कहीं बीच में बाधा के रूप में आते हैं, अगर उनको ठीक कर दिया जाए, उनको रिजोल्व कर दिया जाए तो अवश्य ही हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं भ्राता जी का वेलकम करती हूँ हमारी मौन भट्टी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को विस्तार से हम सबके सामने रखें। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। जैसा कि बाबा ने समय समय पर हमें याद दिलाया है कि बच्चे अभी अंतिम समय है, अचानक बहुत काल और एवर रेडी, तीन बातें बाबा ने कही ना समय समय पर, एवर रेडी, अचानक और बहुत काल, ऐसा समय आ गया है। और जब हम ऐसे घटनाएं भी रोज देख रहे हैं, अचानक बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप देखते हैं अभी उत्तराखंड में हुआ और भी बहुत सारी बातें और देशों में जो हो रही हैं, पहले तो एवर रेडी, अचानक और बहुत काल, इसका क्या अर्थ है उस पर हम थोड़ा सा जाते हैं। अचानक, एवर रेडी का मतलब संपन्न और संपूर्ण स्टेज, हर आत्मा की अलग अलग संपन्न और संपूर्ण स्टेज होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा की संपन्न और संपूर्ण स्टेज श्री कृष्ण है, ऐसे हम में से हर आत्मा की भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार संपन्न और संपूर्ण स्टेज है। तो हमारी हरेक की अपनी अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज वो है एवर रेडी स्टेज। कई बार हम लोग बोलते हैं आप कि हाँ आप एवर रेडी हो, तो कहते हैं हाँ हम तो एवर रेडी हैं, अभी शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो शरीर छोड़ने का मतलब, एवर रेडी का मतलब शरीर छोड़ने की बात नहीं है, एवर रेडी का मतलब है कि हमने क्या वो स्टेज को अचीव कर लिया है। जब बहुत काल का हमारा पुरुषार्थ संपन्न और संपूर्ण बनने का होगा, संपन्न और संपूर्ण रहने का होगा, जब बहुत काल, बहुत काल ना बहुत समय, तब हम अचानक के परम पास होंगे। समझे? एवर रेडी, अचानक, बहुत काल। बहुत काल माना जब हम बहुत समय तक, जब हमारी स्थिति हमें लगे अब हमारी स्थिति संपन्न हो गई है, अर्थात भरपूर हो गई है और संपूर्ण हो गई है, अब हमें कोई व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं। संपन्न और संपूर्ण का मतलब क्या है? अब हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव का तो बात ही नहीं है कि तो हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प भी नहीं आते हैं, व्यर्थ बोल भी नहीं निकलते हैं। हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा कृति माना हमारे कर्म एकदम एक्यूरेट हो गए। हमारा मन, बुद्धि और संस्कार, उन पर संपूर्ण हमारा राज्य हो गया है। हम जो चाहे वो संकल्प करते हैं, जितना समय चाहे अपने मन और बुद्धि को वहां टिका सकते हैं। जब ऐसी स्थिति हमारी है तो वो हमारी संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति हमारी बहुत काल रहेगी और इस स्थिति में रह करके जब हम मनसा सेवा कर सकेंगे, मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों सेवाएं कंबाइंड हो, ये नहीं खाली हम बैठ के मनसा सेवा कर रहे हैं, भले हम अमृत विलास सुबह सुबह उठ के हम मनसा सेवा करते हैं कि तो सारा दिन तो हम कर्म योगी हैं, तो कर्म करते हुए भी हमारी मनसा के वाइब्रेशन दूर तक सारे विश्व तक असर करते रहें, वाचा हमारे बोल दूसरी आत्माओं को बाप की और लक्ष्य की याद दिलाते रहें, तो जब हमारी ऐसी स्थिति होगी, बहुत काल तक ऐसी चलती रहेगी, किसी समय कुछ भी हो जाए हम तैयार हैं। कभी भी हमारी आखिरी घड़ी आ जाए, अचानक कुछ भी हो जाए, तो हम तैयार हैं। बार बार हमें शरीर छोड़ने का अभ्यास, ऐसी स्थिति में रहकर के बार बार शरीर छोड़ने का अभ्यास, तो हम ऐसा तब हम कहेंगे हम इस एवर रेडी, अचानक और बहुत काल की जो बाबा की श्रीमत है, अभी के समय अनुसार हम उसमें खड़े उतर सके हैं। ठीक है, अब आती है बात ज्वालामुखी योग द्वारा विक्रम विनाश कैसे हो सकते हैं, कैसे करने हैं हमको। इनके लिए हमें पांच बातों की आवश्यकता है। अगर हम ज्वालामुखी योग करना, ज्वालामुखी योग का मतलब क्या है? ज्वालामुखी योग का अर्थ है कि वो योग जिसमें हम अपने जितने भी हमारे 63 जन्म में हमने पाप कर्म किए हुए हैं वो सारे भस्म हो जाए। और बेसिकली ये योग है, स्थिति है जैसे लाइट माइट शक्तिशाली योग, लाइट माइट से संपन्न शक्तिशाली योग, मतलब लाइट भी है इसमें, मैं आत्मा लाइट हाउस भी हूं और माइट हाउस भी हूं। जैसा कि आप देखते हैं समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच में जो चट्टाने होती हैं, वहां पर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं और ऊपर बहुत बड़ा लाइट का पुंज होता है जो आने जाने वाले शिप्स को डायरेक्शन देता है कि यहां पर चट्टान है, आप यहां से ऐसे जाएं। समुद्र में और तो सिग्नल कुछ होते नहीं है ना, तो लाइट हाउस तो दूर दूर तक लाइट पहुंचाता है, किंतु माइट हाउस क्या होता है, पावर हाउस जिसे कहते हैं, पूरे शहर में एक ही माइट हाउस होता है, मतलब एक ही पावर हाउस होता है और उस पावर हाउस से सारे शहर में क्या होता है, हर घर में उसका कनेक्शन जाता है, उस घर में हर घर में उससे क्या क्या होता है, लाइट भी आती है, फ्रिज भी चलता है, एसी भी चलता है, हीटर भी चलता है, हॉट प्लेट भी चलती है, नहीं होता है? गरम ठंडा जो भी चाहो उससे हम करते हैं, हर साधन हर तरह से, कमरे को गर्म करना हो, कमरे को ठंडा करना हो, खाना बनाना हो, आइसक्रीम जमानी हो, किसी को जलाना हो, हर कार्य उस पावर माइट हाउस से होता है। तो जब हमारी ऐसी स्थिति हो, लाइट भी हो और माइट भी शक्तिशाली देती हो ताकि हमसे लाइट वो कि हमसे और विकर्म ना हो और पाप कर्म ना हो। श्रीमत के अनुसार जैसे आज की मुरली थी, कदम कदम पर श्रीमत पर हम बाबा से श्रीमत लेते रहें और उस अनुसार चलते रहें। और दूसरा माइट अर्थात जो पहले हमसे विकर्म हो चुके हैं, जो हमसे पहले पाप कर्म हो चुके हैं, उनका हम विनाश कर सके, भस्म कर सके। तो इसके लिए हमें पांच बातें बहुत आवश्यक है। पहली बात है कि हमें ज्ञान की गहराई हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो अति गुह्य है। ये वो ज्ञान है जो कभी किसी मनुष्य ने दिया नहीं, किसी मनुष्य को इसका पता नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए उन्हें भी पता नहीं, वो भी नीति नीति कह गए हम नहीं जानते, ना इति, ना हम इसके आदि को जानते ना हम इसके अंत को जानते। तो हम किंतु एक सिर्फ परमात्मा पिता को, क्योंकि वो इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का डायरेक्टर दिग्दर्शक है, गाइड है, लिबरेटर है, तो उसको हर बात का नॉलेज पता था। तो वो जब स्वयं आए ब्रह्मा के तन में तो उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस ज्ञान की गुह्यता क्या है, गहराई क्या है, इसकी महीनता क्या है, तो ज्ञान की गहराई पहली बात हमको आनी चाहिए। दूसरी बात योग की गहराई, योग भी बहुत ही गहरा है। ये वो योग है जो सब योगों का राजा है, इसमें सब योग समाये हुए हैं। तो इस योग से हम आत्मा राजा बन जाती हैं, मन बुद्धि संस्कार का, पांचों कर्मेंद्रियों का, आठों अंगों का, शरीर के आठों अंगों का। और ना खाली मन बुद्धि संस्कार, पांचों कर्मेंद्रियां, आठों अंग, बल्कि आसपास पांचों प्रकृति के तत्वों का भी। आत्मा कर्मेंद्री जीत बनती है, माया जीत बनती है राजयोग से, और साथ साथ प्रकृति जीत अर्थात पांचों तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। तो इस योग की गहराई हमको आनी चाहिए। फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है अभ्यास। हमें ज्ञान की गहराई भी हमें पता लग गई, योग की गहराई भी पता लग गई, किंतु अभ्यास, तत् अभ्यास, निरंतर कंटिन्यूअस अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि हमने कंटिन्यूअस 2500 साल देह अभिमान में आके विक्रम किए हैं, पाप कर्म किए हैं, और वो पाप कर्म संस्कार के रूप में हमारे यहां रिकॉर्ड हैं। विक्रम क्या होते हैं, पाप कर्म क्या होते हैं, जो भी हम कर्म क्या कहलाते हैं, कर्म कौन से होते हैं, खाली हाथों पैरों से कर्म करना कर्म नहीं है। जो भी कर्म हम कर्मेंद्रियों के द्वारा करते हैं, देखना भी कर्म है। कर्मेंद्रियां कौन सी है, आंख, नाक, कान, मुख और त्वचा, हमारे हाथ पैर भी उसमें आते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं कर्मेंद्रियों के द्वारा, देखना, सुनना, बोलना, खाना, सूंघना और हाथ पैरों से कर्म करना, तो जो भी है कर्म, अगर हमने विकारों के वश होकर किए तो वो विक्रम कहलाते हैं या पाप कर्म कहलाते हैं। और जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, हाथ पैर से कर्म करते हैं, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो रिकॉर्ड हो रहे हैं अंदर एक फाइलों के रूप में जमा हो रहे हैं। और वो कर्म जितनी बार हम करते हैं उतनी बार और फाइल वो स्ट्रांग हो जाती है। और वो फाइल जैसे ही वो व्यक्ति जिसके साथ हम विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, या वो परिस्थिति जब हमारे सामने आती है, वो फाइल वापस खुल जाती है। 20 साल पहले, 25 साल पहले हमने कोई विकर्म किया था, पाप कर्म किसी व्यक्ति के साथ किया था, क्रोध किया था या लोभ के वश उसको धोखा दे दिया था या कोई भी बात हमने ऐसी की थी, तो व्यक्ति 20-25 साल तक वो कल विकर्म हमसे दोबारा नहीं हुआ, किंतु जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो क्या होता है, 20 साल पहले किया था तो क्या होता है, 20 साल की दोबारा देखते क्या होता है, उसको क्या होता है, वो फाइल खुल जाती है ना, और फिर वापस वही विकर्म हो जाता है। क्रोध किया था, क्रोध हो जाता है, मतलब जो वही वाइब्रेशंस, वही बातें खुल जाती हैं। और कई बार वो व्यक्ति सामने नहीं आता, किंतु तो उसकी स्मृति आ जाती है किसी और को देख करके, फाइल खुल जाती है, फिर वही विकर्म हो जाता है। और वो हमारे अंदर फिर दोबारा से पक्का उसको और इम्प्रेशन बन जाता है। तो इस तरह से हमारे विक्रम, हमारे अंदर ये विक्रम है जो हमको, हम ना चाहते हुए भी इससे निकल नहीं पाते, इसलिए विक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पाप कर्म है हमारे, है ना। तो ये अभ्यास हमें अति आवश्यक है। ये जो अभ्यास है, जो ज्ञान और योग की गहराई हम जान गए, पहचान गए, फिर उसी में स्थित रहना, बार 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 अभ्यास करना, इस अभ्यास को बार बार रिपीट करना। जो बाबा ने इसके लिए हमें अभ्यास दिया है, हमें दिनचर्या बना करके दी है, हमें जो मर्यादाएं, नियम और मर्यादाएं बना के दी हैं, उनका बार बार अभ्यास करते जाना। प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। कहते एक्सपीरियंस तो कर लेते हैं हम, हमने यहां पर आप आए, ज्ञान का अनुभव कर लिया, ज्ञान की बड़ी अच्छी गहरी गहरी क्लासेस आपको मिली, उससे कुछ आपको अनुभव हुआ, आपने कुछ ने बहुत अच्छा योग कराया शाम को, दादियों ने क्लास के दादियों ने योग कराया, या यहाँ का वातावरण मधुबन का इतना अच्छा है, यहाँ पर आते ही बैठते ही योग लग जाता है, तो आपको अनुभव तो हो गया, पर अनुभव काफी है, अनुभव काफी है। पहले सुनना, सुनना काफी नहीं है, सुनने से तो कुछ नहीं होता है, सुनते तो इतना है बात, सारे तरह जिन्हें हम सुनते ही आए हैं, उससे कोई परिवर्तन हुआ क्या? सुनना और जानना काफी नहीं है। डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स खुद जानते हैं, है ना, सुनते भी रहते हैं हम अखबार में, टीवी में सुनते भी रहते हैं, और किंतु और डॉक्टर्स जानते भी हैं सारा कुछ हेल्थ के बारे में, कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तली चीजें नहीं खानी चाहिए, पराठा पकौड़ा समोसा नहीं खाना चाहिए, मिठाइयां नहीं खानी चाहिए, है ना, रोज सैर करनी चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए। किंतु डॉक्टर जानने के बाद भी और उसका रिजल्ट भी देखने के बाद भी, उनके पास जो पेशेंट्स आते हैं, हार्ट के पेशेंट्स आते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापे के पेशेंट्स आते हैं, कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, वो जानते हैं उनको क्यों डिप्रेशन हुआ, गलत खान पान से, गलत सोच से, गलत नींद से, गलत व्यवहार से, फिर भी वो गलत करते रहते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? जीभ का स्वाद रोक पाते हैं, देर से सोना, देर से उठना रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं? टेंशन होती है, गुस्सा आता है, उनको भी आता है। इसे डॉक्टर्स को आम लोगों से भी ज्यादा बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, डॉक्टर्स को आम लोगों से भी ज्यादा, आम पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा है। तो कहीं सोचे हमने सुन तो लिया, हमारे के बड़ा अच्छा लगा हमको, बस इससे हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, हो जाएंगे, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हो जाएगा? नहीं होगा। सुनने से श्रवण काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं है, सुन के उसका अनुभव भी कर लेना वो भी काफी नहीं है। अनुभव की अथॉरिटी बनना होता है, मतलब एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्टीज, है ना, एक्सपर्ट बनना होता है। जैसे कहते हैं ना, आजकल एमबीबीएस डॉक्टर का वैल्यू नहीं है, ज्यादा वैल्यू नहीं है, आजकल क्या बनना पड़ता है, स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है ना, नहीं तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, एक छोटे सब्जेक्ट को लेकर के उसे गहराई में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है, बहुत, है ना। तो स्पेशलिस्ट बनते, किडनी का स्पेशलिस्ट बन गया कोई, हार्ट का स्पेशलिस्ट बन गया कोई, न्यूरोलॉजिस्ट बन गया, है ना, तो स्पेशलिस्ट बनना पड़ता है, एक्सपर्टीज चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस को बार बार प्रैक्टिस करने से, बार 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 प्रैक्टिस करने से, वो छोटे छोटे एक एक एक्सपीरियंस को, एक एक अनुभव को, फिर हमारे अंदर एक्सपर्टीज आती है, ठीक है, तब हम एक्सपर्ट बनते हैं। फिर चौथी बात जो हमको चाहिए, संपूर्ण पवित्रता चाहिए, ठीक है। अगर हमें ज्वालामुखी योग की एक कंडीशन है, प्री कंडीशन कह सकते हैं, अगर हम ज्वालामुखी योग सीखना चाहते हैं और हम उसका अनुभव करके अपने सारे विक्रमों को विनाश कर लेना चाहते हैं, तो हमें ये हमें करना अति आवश्यक होगा। फिर क्या चाहिए उसके बाद, चौथी बात क्या चाहिए, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा पता है आपको, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्रता हो, अर्थात कर्म में तो पवित्रता होगी, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन हो गया, ठीक है, कोई जिस संस्कृति में हम जा रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, विश्व में हम जा रहे हैं, वहां का जो बेसिक बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, वहां का बेसिक वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, पवित्रता, पवित्र जीवन, कंप्लीटली पवित्र जीवन। वहां देखा भानी नहीं है, टोटली 100% सोल कॉन्शियस लोग हैं। वहां ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना आलस्य है, ना अलबिलापन है, ना चिंता है, ना भय है, ना ईगो है, ना कुछ भी नहीं है, मतलब ना ईर्ष्या द्वेष है, ना जल्दीबाजी, कोई चीज का प्रेशर है ही नहीं, सबका आपस में प्यार ही प्यार, बेशुमार। तो ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है संपूर्ण पवित्रता, अर्थात जिसमें ये भी ना हो ये क्या, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये इसने क्यों हो गया ऐसा, जरा सा क्या क्यों कैसे होना मन में आना, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये भी अपवित्रता है। क्योंकि सारे विश्व का जो मालिक है, परमात्मा है, उसका बनाया हुआ ड्रामा है ये, उस पर क्वेश्चन रेज करना, ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करती है, ये भी तो अपवित्रता है। नहीं, नहीं अपवित्रता नहीं, तो ये भी अपवित्रता है, मतलब वैध संकल्प, क्या क्यों कैसे कब से क्या पर क्या क्या जन्म होता है, किसका जन्म होता है, वैध संकल्प का जन्म होता है, तो वैध संकल्प भी अपवित्रता है। तो अगर हमारे अंदर एक भी संकल्प चलता है जो अयथार्थ है, जिसका नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे अंदर अपवित्रता है, राइट। तो पहले मैंने क्या बताया, ज्ञान की गहराई, दूसरा योग की गहराई, तीसरा अभ्यास, तत् अभ्यास, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, और फिर चौथा संपूर्ण पवित्रता। मैंने चौथे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि ज्ञान की गहराई जब समझेंगे तो पवित्रता तो आएगी, किंतु संपूर्ण पवित्रता कैसे आएगी, जितना ज्यादा योग करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, उसके करते करते फिर क्या होगा, संपूर्ण पवित्रता आती जाए। शुरू में संपूर्ण पवित्रता नहीं आएगी, वो ज्ञान योग के सब्जेक्ट में पवित्रता आ जाएगी, शुरुआत जो हम दृढ़ता से, पहले हम कर्मणा में दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा हम आज से पवित्र रहेंगे, है ना, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे, वो शुरुआत में ज्ञान में ही ये बात आ जाती है ना। चौथे नंबर पे मैंने संपूर्ण पवित्रता रखी है, और फिर लास्ट है पांचवा नंबर, बेहद की वैराग्यवृत्ति। बेहद की वैराग्यवृत्ति अर्थात बेहद, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब एकदम टोटल रिनाउंसमेंट। ये जब देह भी अपनी नहीं है, अपने देह से भी वैराग हो, अपने देह के संबंधों से, माता पिता, भाई बहन, युगल, बच्चे, सबसे वैराग, देह से भी वैराग, देह के संबंधों से भी वैराग, देह के स्वभाव संस्कार से वैराग। देह का स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव है ये पांच विकार। जैसे हम अपने को देह समझते हैं, दूसरे को देह देखते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर काम विकार जागृत होता है। अपनी देह देखने से भी काम विकार जागृत होता है, दूसरे ही खाली नहीं, अपनी देह देखने से भी काम विकार जागृत होता है। तो देह का स्वभाव ही है काम विकार, क्रोध, देह का स्वभाव ही क्रोध है, देह का स्वभाव ही लोभ है। देह जैसे समझेंगे, अरे ये तो चीज रख लो ना, बाद में काम आएगी, पैसा काम आएगा, चीज काम आएगी, देह का स्वभाव ही लोभ है, देह का स्वभाव ही मोह है। जैसे ही आपको होगा ना देह समझेंगे, तो क्या होगा, कोई तो चाहिए ना, साथी चाहिए ना, कोई तो बच्चा होना चाहिए ना, कोई तो साथ होना नहीं, हमें पूछने वाला तो हो, मोह है, देह का स्वभाव ही मोह है, और देह का स्वभाव ही अहंकार है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या मैं कोई ऊंची ऊंची बातें नहीं कर रहा हूं, मुश्किल बात है तो मुझे रोक देना, कभी कहीं भी रोक देना। क्योंकि देखिए, जब जो ये हार्ट का जो प्रोग्राम बताया ना, हार्ट का प्रोग्राम, ये खाली हार्ट का प्रोग्राम नहीं है, कोई भी मन और तन का रोग, खाली हार्ट की बात नहीं, हार्ट के पेशेंट जो आते हैं हमारे पास उनको खाली एक बीमारी नहीं होती, साथ में रिश्तेदार भी होते हैं, उनके रिलेटिव जो वाइफ युगल होती है या हस्बैंड होता है, उनको सब तरह की बीमारियां होती है ना। और कोई भी रोग हो चाहे मन का चाहे तन का ना, वो सब ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक होते हैं ना वो, मतलब क्योंकि उसमें हर बात यहां से देखे और यहां तक नीचे तक ना, सिर से लेके चोटी तक, सिर से लेके पैरों तक, एडी तक, जो भी मन और तन की तकलीफ है वो सब ठीक हो जाती है। ये खाली हार्ट की बात नहीं है कि तो हर रोग हर परेशानी खत्म हो जाती है ना। तो इसमें राजयोग की बहुत बहुत गहराई चाहिए ना। मेरे राजयोग की गहराई मुझे कहां से मिली, मुझे यही पेशेंट के साथ अनुभव करते करते, प्रैक्टिस करते करते, लोगों की तकलीफें सुनते सुनते, हमें ये हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हमने वो इलाज कराया, हमने वो, सब जगह फेल हो गए, सब जगह कुछ नहीं हुआ, फिर बाबा से पूछ पूछ के अमृत वेले उनसे रू रिहान करके, बाबा इसकी बीमारी कैसे ठीक होगी, इसका क्या कारण है, फिर बाबा से करके, तब राजयोग का मुझे ना सही मायने में समझ आई। मुझे राजयोग बाबा की मुरलियों से और फिर बाबा से रू रिहान करके जो समझ में आया ना, उसी के बेस पे मैं आपको जो बात आज बताना, आज जो आपसे क्लास में डिस्कस करेंगे ना, रू रिहान करेंगे। क्लास तो मुझे करानी नहीं आती है, क्लास तो हमारे बड़े भाई बहन कराते हैं, मैं सिर्फ आपसे रू रिहान करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको, बेहद की वैराग्य वृत्ति ना, तो पहले देहे, फिर देह के संबंध, फिर देह के स्वभाव संस्कार। देह के स्वभाव, स्वभाव की बात कर रहा था, तो काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, शक्ल हमारी थोड़ी सुंदर होती है, थोड़ा सा मांस किसका मोटा, किसी का थोड़ा कम, किसके नैन नक्श, उसका भी अहंकार हो जाता है ना, किसकी फिगर है ना, तो उसका भी, और कुछ पैसा है पास में या कोई चीज है उसका भी अहंकार हो जाता है, नहीं होता है? तो देह का स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव, ये देह का स्वभाव है। और देह के संस्कार क्या है, आलस्य, आदत है, जैसे देह समझेंगे ना आलस आएगा, सो जाओ, थोड़ा मौका मिला तो सो जाओ, आधा घंटा सो जाते हैं, रात को नींद कम आई थी, आधा घंटा सो जाते हैं, एक घंटा सो जाते हैं, नहीं नहीं आता थी? संस्कार माना आदत, नेचर है ना, छोड़ो ना, चार बजे कौन उठे, चलो सवा चार उठेंगे, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, चलो बाबा तो अभी भी है ना, बाबा तो अमृत वेला संगम ही सारा ही अमृत वेला है ना, बाबा कहते कोई बात नहीं कर लो ना, उठ जाओ, उठे तो सही ना, चलो पांच मिनट किया ना, पांच मिनट सही किया तो ना, नहीं। आलस मतलब देह की नेचर है, नहीं ऐसा, संस्कार माना आदत है ना, अलबेलापन देह की नेचर है, नेचर है, बिल्कुल क्लियर कट नेचर है, चलो नहीं आज, आज बाद में कर ले, आज ये घर में रिश्तेदार आए हुए ना, रात को 11-12 देर सोए थे ना, चलो अभी थोड़ा सा कर लेते हैं, सुबह थोड़ा देर से कर लेंगे, आज मुरली घर में ही पढ़ लेते हैं, सेंटर पे क्या जाएंगे, नहीं ऐसे अलबेलापन। फिर दूसरों में दोष निकालने की आदत, जैसे अपने को देह समझते हैं, देह की आदत है कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, तो दूसरों में दोष निकालेंगे, मैं तो, मेरे अंदर तो अच्छी बात है ये, इसके अंदर तो ये है नहीं, दोष निकालेंगे, अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए दूसरों में दोष निकालेंगे, ये देह की नेचर है, बदला लेने की भावना, ये देह की नेचर है, आदत है, संस्कार है। शक करना नेचर है देह की, आदत है, कोई कुछ होगा ना हमें पूछेगा नहीं, या कोई व्यक्ति ऐसे नहीं देर से आया, कुछ बात हो गई, तो शक करने की मतलब आदत है, शक करने की अपनी आदत हो जाती है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज्यादा, विश्वास बहुत कम हो पाता है दूसरों पर, लाइफ के पिछले अनुभव, किसी पे ट्रस्ट रखें, निश्चय रखें, नहीं, शक, सस्पिशियसनेस, अनुमान लगाना, उसने ऐसा कर दिया होगा, उसने ऐसा लगा, और जबकि 99% हम रॉन्ग होते हैं, नहीं? जब सोचते हैं राइट होता, रॉन्ग होता, रॉन्ग होते हैं, मतलब वो होते हुए फिर भी बार बार शक का अनुमान वही करते हैं, शक और अनुमान इंसान की नेचर है, देह की नेचर है, इंसान की नहीं है, देह की नेचर है। और फिर चिंता करना, चिंता इंसान की नेचर, मतलब देह की, सॉरी इंसान शब्द नहीं यूज करना चाहिए, देह की नेचर है, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, कभी भी आपका बच्चा देर हो गई स्कूल से आने में, तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि बच्चा स्कूल में किसी से बात करने लगा होगा या टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ले ली या बस को आने में देर हो गई, क्या सोचेंगे हमेशा कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो ना, बच्चे को उठा के ना ले गया हो कोई ना? कभी नेचुरल नॉर्मल बात समझेंगे क्या? नहीं। तो ये जो है हमारी नेचर है ना, चिंता नेचर, चिंता करना देह की नेचर है, देह का संस्कार, भय लगना, भय डर भय, तो ये भी देह की नेचर है ना? संस्कार है। और फिर प्रेशर, हमेशा प्रेशर महसूस करना, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम जैसे मैंने कहा ऐसे ही होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूं ऐसे ही करना चाहिए, है ना? परफेक्शन है ना, परफेक्शन इंसान की नेचर है। किसमें? किसमें परफेक्शन? दुनियावी कामों में, है ना, अंदर परफेक्शन नहीं, दुनियावी कामों में, गिलास ऐसे क्यों रखा है, वो गुलदस्ता ऐसे क्यों रखा है, ये टेबल टेढ़ी क्यों रखी है, है ना, टाइम पे 9 बजे बुलाया था 9 बजे क्यों नहीं आए, है ना, मुझे 9 बजे पहुंचना है। तो ये जो जैसे बोलते टाइप ए नेचर, टाइप ए प्रेशर ऑफ टाइम, प्रेशर ऑफ वर्क, हर समय जल्दी महसूस होना, टाइम की कमी महसूस होना, बिजी, हर समय फील करना मैं बहुत बिजी हूं, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये जो देह की नेचर है। फिर ईर्षा द्वेष, कभी भी मतलब जो है इंसान कितना भी पैसा हो, अंबानी के पास, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी दोनों सगे भाई हैं, एक माँ के बच्चे हैं और दुनिया भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन है ना, तो भी क्या है उनके अंदर आपस में प्यार है ना, बहुत प्यार है ना, प्यार है बहुत, अनिल जाके रोज मुकेश से गले मिलता है, मिलता है, टीना नीता से गले मिलती है रोज, मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, तो अरबों रुपया खरबों रुपया उनके पास है, फिर भी क्या करते हैं, ईर्ष्या द्वेष ना इंसान की नेचर है। तो ये जो है 5 विकार इंसान की स्वभाव है, देह का स्वभाव है, और 10 बच्चे उनके हैं वो देह की नेचर है, ठीक है। तो देह के स्वभाव संस्कार ये जो है हमारे, इनसे भी वैराग, जब वैराग की बात कर रहा हूं देह से वैराग, ये देह मेरी नहीं है, इसके लिए अपने आप से बात करनी पड़ती है, बार 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 बात करनी पड़ती है कि मैं जाऊंगा साथ जाएगा क्या, ये साथ जाएगा, देह साथ जाएगी, साथ में मम्मी साथ जाएगी, पापा, पत्नी, बच्चे, कोई तो साथ जाएगा, कोई तो जाएगा, नहीं जाएगा, अच्छा ये विकार काम क्रोध लोम अहंकार जाएगा साथ में, ये आलस अलबेलापन जाएगा, मौत को आना हो रात को 9 बजे, हम कहेंगे आज नहीं सुबह सुबह आना 6 बजे आना, आएगी क्या, आलस अलबेलापन चलेगा। तो मतलब ये जो है देह की नेचर है ना, ये कोई भी चीज में साथ नहीं जाएगी। फिर देह के पदार्थ, जो हमारा जो मकान है, कार है, प्रॉपर्टी है, हमारे कपड़े हैं, है ना, हमारा क्रीम पॉलिश, क्या बोलते हैं मुंह पे क्रीम लगाते हैं ना, है ना, तेल सिरका साथ जाएगा, कितना ध्यान रखते हैं मुंह का, कितना चीजों का। एक चीज हमारे ब्रश नहीं लेके आए, आप यहां पर आए ना, ब्रश लाना भूल जाओ, टूथपेस्ट लाना भूल जाओ, क्रीम लाना भूल जाओ, तो क्या होता है, नहीं लगाओ एक दिन क्रीम, तो सारा दिन बुद्धि में फिर क्रीम, मैंने क्रीम लगाई, चेहरा बहुत ड्राई डर लग रहा है, ड्राई डर, यहां योग नहीं लगेगा, क्रीम से योग रहेगा, दिल लगा रहेगा, नहीं होगा, नहीं होते। देखे पदार्थ, कंगा नहीं हो, बार बार बाल देख यूं करते रहेंगे, यूं करते रहेंगे, हालांकि वो ठीक है तो अभी यूं करते रहेंगे, सब मेरे बाल ही देखने के लिए यहां पर बैठे, नहीं है। देखे पदार्थों को कितना कितना हमारा राग है, कितना उनसे हमारे अटैचमेंट है, नहीं है सर। तो ये देह के पदार्थ, इन सबसे वैराग, ये है बेहद का वैराग। आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है, आसान है, बताओ, जो समझते हैं बहुत मुश्किल है हाथ उठाओ, जो समझते हैं आसान है वो हाथ उठाओ, बाकी बीच में 50% तो बीच में रह गए ना, ना इसमें हाथ उठाया ना उसमें हाथ उठाया, नहीं तो कौन सी पार्टी के हैं, थर्ड फ्रंट है, एक कांग्रेस, एक बीजेपी, एक तीसरा फ्रंट है, समाजवादी पार्टी और दूसरी वाली पार्टी में जो थे ना, नहीं ऐसे। तो ये पांच बातें, फिर इस पांच बातों को सिद्ध करने के लिए मैं स्लो जा रहा हूं कि फास्ट जा रहा हूं या बीच में हूं? बीच में। इन तीन बातों को, इन सभी पांच बातों को अगर हम जीवन में ला सकें, इसके लिए हमारे फिर तीन बातें हमें जीवन में लानी पड़ेंगी। ठीक है, पहली बात, हमें जीवन को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा, अंतर्मुखता। अगर हम बाह्यमुखी रहेंगे, अधिकतर आज सभी इंसान बाह्यमुखी हैं। बाह्यमुखी माना बाहर देखते हैं, बाहर माना परचिंतन, प्रदर्शन करते हैं, दूसरों के बारे में देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो अंतर्मुखी नहीं है, अपने अंदर नहीं देखते हैं, मैं कौन हूं, मेरा कौन है ना। तो अंतर्मुखता सबसे पहली बात है, अगर हम चाहते हैं इस रास्ते पर चलना, ज्वालामुखी याद में टिकना, हमारे सब विकर्म विनाश हो जाएं, हम संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, एवरेडी अचानक बहुत काल के जो बाबा ने हमें कार्य दिया है, होमवर्क दिया हुआ है, उसको हम एक्यूरेटली हम कर सकें, अचानक के पेपर में पास हो सकें, एक सेकेंड में नष्टोमोहा स्मृति लब्धा बन जाए। अचानक का पेपर क्या होगा, लास्ट पेपर क्या होगा, नष्टोमोहा स्मृति लब्धा। समय कितना पेपर का, एक सेकेंड, है ना, एक सेकेंड के पेपर में, एक सेकेंड में पास होना है, डेढ़ सेकेंड नहीं, डेढ़ सेकेंड लगा तो फेल। तो एक सेकेंड में जो एक सेकेंड में भी पास हो सकते हैं, हाथ उठाए, जो एक सेकेंड में पास हो सकते हैं इस नष्टोमोहा स्मृति लब्धा के पेपर में, एक सेकेंड में नष्टो स्मृति लब्धा, अभी अभी बैठे बैठे एक दो तो हो सकते हैं ना, कोई भी नहीं पास हो सकता, एक पास होगा, दो पक्का पक्का, अरे चलो दो ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। तो ये इस पेपर में पास हो जाए ना, तो हमें जो है बाह्यमुखता से अंतर्मुखता का नेचर अपनी बनानी पड़ेगी, अंतर्मुखता की। ठीक है, मैं फिर एक विस्तार में जाऊंगा, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं, मतलब कि आपके ये सब्जेक्ट बहुत गुह्य सब्जेक्ट है, पता है आपको, ज्वालामुखी याद का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट बहुत गुह्य सब्जेक्ट है ना, इसलिए मैंने कहा मैं आपको पहले वो होती ना किताब के शुरू में क्या होता है वो टॉपिक होते हैं, टॉपिक नहीं होते, टॉपिक होते हैं ना, वन टू थ्री, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, छठा अध्याय, सातवा अध्याय, आठवां अध्याय। तो मैंने कहा पहले आपको अध्यायों के नाम सुना दूं, और ये तो ज्वालामुखी याद की अगर हम अनुभव करना हो और गहराई में जाना हो तो पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन माना सुबह शुरू करें 6 बजे 7 बजे और रात 7:30 बजे तक लगे रहें, तब जाके भी शायद पूरा ना हो ना। तो फिर भी मतलब आप ध्यान से एकाग्र होके अनुभव भी करते जाएं, और फील, खाली ये नहीं सुनना नहीं, खाली अनुभव भी करते जाएं, जैसे सा बता रहे हैं ना वैसे से आप अनुभव भी करते जाए ना गहराई से, क्योंकि इस शब्दों में अनुभव भी भरा हुआ है ना, तो खाली शब्द नहीं है, बाबा की जो भी ज्ञान है ये बाबा का दिया हुआ ज्ञान है, कोई मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो बाबा की मुरलियों से ही दिया हुआ है ना, चिंतन से ही, जो बाबा की मुरली के मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण से ही जो पैदा हुआ है वही आपके सामने रखा जा रहा है, इसको बहुत गहराई से है ना, प्रैक्टिकल, ये सब बातें प्रैक्टिकल हैं और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत सहज है, बिल्कुल सहज है, जैसे जैसे आप इसकी गहराई में हम आगे जाएंगे आपको लगेगा बिल्कुल सहज है, इसमें जरा भी पुरुषार्थ की बात नहीं है, बहुत सहज है। तो अंतर्मुखता, सिर्फ हमको डायरेक्शन चेंज करनी है, अंतर्मुखता का मतलब होता है एक सेकेंड में देह से रिटैच, एक सेकेंड में देह से रिटैच, मैं शरीरी आत्मा, अंतर्मुखता का यह मतलब है। ठीक है, अंतर्मुखता का यह अर्थ है एक सेकंड में देह से रिटैच, मैं अशरीरी आत्मा, अशरीरी माना बॉडीलेस सोल, है ना, जैसे मैं देह, आत्मा इस देह में नहीं हूं, इस देह से अलग हूं, फील कर रहे हैं आप, मैं आत्मा इस देह से अलग हूं। ठीक है, जैसे देह से बाहर लेके आ जाओ अपने आत्मा को, जैसे आत्मा यहां आ गई, चमक रही सितारे के मस्जिद, अलग हूं देह से। तो पहली चाहिए अंतर्मुखता, बाह्य मुक्ता को छोड़ दो। बाह्य मुक्ता एक इनकम्प्लीट वर्ड है, इम्परफेक्ट वर्ड है। पर चिंतन पर दर्शन से हमारे विचारों की स्पीड बढ़ जाती है और उससे हमारे अंदर हमारी एनर्जी का लॉस होने लगता है, हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। हम सभी 63 जन्म बाह्य मुखी रहे हैं, हम सिर्फ बाहर देखते रहे, पर चिंतन पर दर्शन करते रहे, जिसके कारण आज हम इस स्टेज पर पहुंच गए हैं, गिर गए हैं, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए, पतित बन गए, विकारी बन गए, कंगाल बन गए। अभी हमको वापस पावन सतो प्रधान बनना है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बनना है। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, धारा बदलनी पड़ेगी, है ना, डायरेक्शन चेंज, यू टर्न लेना पड़ेगा हमको। हमें क्या करना पड़ेगा, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। और अंतर्मुखता का मतलब क्या बताया, एक सेकेंड में देह से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा हूं, इसमें टिक जाऊं, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहें बार 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 बार, है ना। फिर दूसरा है एकांतवासी। सारे 2500 वर्ष हमें एकांत का अभ्यास खत्म हो चुका है। हम दूसरों के साथ रहने में, दूसरों के साथ जीने में, दूसरों के साथ साथी चाहिए, कोई ना कोई हमको ऐसा चाहिए, उसी में हमारा जीवन बीता है 63 जन्म। अभी हमको एकांतवासी, एकांतवासी माना एक के अंत में खो जाना। एकांत एक, एक कौन, शिव बाबा, परमपिता परमात्मा शिव, एक के अंत में खो जाना। एक कौन है, शिव बाबा, वो है कौन, पर कहां रहता है, परम धाम, सूर्य चांद तारों से भी पार, वो है ज्ञान का सागर। किसका सागर, ज्ञान का सागर। तो ज्ञान के सागर के अंत में खो जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूं, अशरीरी मैं ज्योति बिंदु, अशरीरी आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, अशरीरी आत्मा, अति सूक्ष्म सितारा चमक रहा है और इस देह से मैं अलग हूं। अभी आत्मा कहां खो जाए, कहां खो जाए, ज्ञान सागर के अंत, ज्ञान सागर कहां बैठा है, परम धाम में बैठा है। तो अब मैं आत्मा कहां खो जाऊं, परम धाम में शिव बाबा, तो अंत में खो जाओ। क्या हुआ, खो गए, ज्ञान सागर माना क्या, ज्ञान माना क्या, ज्ञान माना चार बातें। ज्ञान में तो ऐसा, तो ज्ञान के बारे में कहा जाता है, ज्ञान माना, ज्ञान क्या है, इतना बेहद है, इतना बेहद है, पूरी धरती को कागज बनाओ, सागर को शाही बनाओ और जंगलों को कलम बना दो तो भी ज्ञान लिख नहीं सकते। किंतु सार रूप में इसमें चार बातें सिर्फ, मुरली है ना, मुरली जो ज्ञान मुरली है, बाबा की जो मुरली है वही ज्ञान है ना। और मुरली में भी क्या बात है, मुरली में भी चार बातें होती हैं विशेषतया रोज, ए बी सी डी। क्या होता है चार बातें, ए बी सी डी, ए फॉर आत्मा। तो पहली पहली जो बात क्या है, मैं कौन हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भ्रिक्टु के मध्य, और यहां पर दोनों ब्रेन थे, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन, इन दोनों के बीच में एक एक और ब्रेन है जिसको ब्रेन ऑफ द ब्रेन्स कहते हैं, जहां पे दोनों ब्रेन्स का कंट्रोलिंग रूम है। दोनों ब्रेन्स का कंट्रोलिंग रूम कहां है, दोनों के बीच में, यहां पर, उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हाइपोथैलेमस कहते हैं वहां पर। और हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड माना वो एकदम उसके नीचे है, उसे कनेक्टेड है, उसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो दोनों ब्रेन्स का जहां पर कंट्रोल रूम है, और उस कंट्रोल रूम में जो दोनों दिमाग में हम दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन का जो हम टोटल डिकोडिंग हो जाती है यहां पर, और उसका इफेक्ट, फिर अल्टीमेट इफेक्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर पड़ता है, उससे हार्मोन निकलते हैं और वो हार्मोन सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आत्मा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में बैठी हुई, दोनों भ्रिष्ठ के मध्य, बीच में यहां हाइपोथैलेमस है, यहां इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है और उस दोनों के बीच में आत्मा बैठी है। ठीक है, यहां से लगभग 2.5 इंच अंदर और यहां से लगभग 3 इंच नीचे, यहां नहीं बैठी कि खाल उतार के देखो तो नर्मदात्मा दिखाई दे, नहीं, अंदर, यहां से 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे है ना, अति सूक्ष्म, इन आंखों से ना दिखाई देने वाली, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दुनिया की कोई चीज इन आंखों इसको देख नहीं सकती, सिर्फ अनुभव की आंख ही इसको देख सकती है, ज्ञान की तीसरी आंख, ये फिजिकल आंखें नहीं। तो कभी भी आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करो। कई बार हमारे भाई बहन योग करते हैं ना, कहते हैं सिर दर्द हो जाता है योग करते करते, वो यूं आत्मा को देखने की कोशिश करते हैं, आंखें चढ़ा लेते हैं ऊपर की तरफ, बस आत्मा को दिखाई दे, फिर विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सब उसे राजयोग नहीं कहते हैं ना। विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना, ये राजयोग नहीं है। राजयोग रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन माना रियलाइज, रियल को, रियल माना सत्य को तीसरी आंख से अनुभव करना है ना, रियलाइज करना। ठीक है, रियल को, सत्य को जानना, सत्य के में टिक जाना, उसे कहते राजयोग। ठीक है, तो ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, बाबा माना सर्व आत्माओं का पिता कौन है, परमात्मा, बाबा है ना, पिता है हम सब आत्माओं का, हम सबका डैडी है ना, पापा है हमारा है ना? तो वो हम आत्माओं का पिता परमात्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, अर्थात हमारा उससे संबंध है, हमारा से क्या संबंध है, संबंध और रिलेशन, कनेक्शन एंड रिलेशन, कनेक्शन से ही रिलेशन होता है ना, तो हमारा उससे संबंध क्या, संबंध तो सारे संबंध हमारे उनके साथ हैं, पर मुख्य 9 संबंध हैं, माता, पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन और सर्जन। ठीक है, और 9वां संबंध है बच्चा। तो 9 संबंध उनके हमारे साथ हैं, ऐसे तो कोई भी संबंध आप उनके साथ लगा सकते हो ना, कि तो 9 संबंध मुख्य हैं हमारे उनके साथ है। सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इस नाटक में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट इस ड्रामा में बजा रही है और मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है, इस ड्रामा का, और वो कर्म सिद्धांत के अनुसार इसको एक्यूरेट डायरेक्ट कर रहा है, एक्यूरेट इसको डायरेक्शन दे रहा है, अर्थात जो भी हमारे संबंध हैं, हर आत्मा एक्टर है, चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे पति पत्नी हैं हम, चाहे बच्चे हैं हमारे, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, ऑफिस में काम करने वाले हैं हमसे, हमारे बॉस हैं या साथ में काम करने वाले, नीचे काम करने वाले, हमारे जो भी सो कॉल्ड संबंधी हैं, वो सब हमारे साथ क्यों आए, क्योंकि पिछले जन्मों का हमारा हिसाब किताब उनके साथ था, हमने कुछ लिया हुआ था, कुछ दिया हुआ था, दुख दिया हुआ है किसी को, सुख दिया हुआ था, तो वही व्यक्ति मेरे युगल के रूप में, मेरे बच्चे के रूप में, मेरे बहन के रूप में, मेरे भाई के रूप में, सास के रूप में, माता पिता के रूप में, ससुर के रूप में, दोस्त के रूप में आकर के मुझे दुख या सुख देता है, ब्याज के साथ, किसके साथ, इंटरेस्ट लगता है ना, नहीं लगता है, ब्याज के साथ देता है। ठीक है, ब्याज का रेट तो होगा ना ऊपर भी, नहीं दुनिया का नियम है, नहीं ब्याज कितना होता है ऊपर, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बता सकते हैं कितना रेट ऊपर होता होगा, तो ब्याज के साथ वो उतना ही दुख सुख दे रहा है। ठीक है, और अगर मैं बाबा को याद करता हूँ और बाबा को बोलूँ बाबा इसको ये मेरी पत्नी है या मेरा पति है मुझे दुख देता है बहुत, या मेरा बच्चा है मुझे बहुत दुख देता है, आप इसको ठीक कर दो ना कि मुझे दुख नहीं दे, तो बाबा क्या करेगा? ठीक कर देगा उसको, ठीक करेगा? एक बाप अपने बच्चे के पास जाता है और बच्चे ने किसी से 1000 रुपए उधार लिए हुए हैं, वो बार बार उस बच्चे को तंग करता है वो दुकानदार, तो मेरे 1000 रुपए दे 1000 रुपए दे, और आप बाप उसके वहां पर जाता है उस बच्चे को लेने के लिए, और बाप उसको कहता है कि तो अभी क्या करे, बाप क्या करेगा? बाप उसको डांट देगा 1000 रुपए नहीं देगा, माफ कर दे चल तू, ऐसे करेगा बाप? करेगा ऐसा नहीं करेगा ना, बाप क्या करेगा उसको 1000 रुपए दे देगा बच्चे को कि बेटा तू इसको दे दे, नहीं उसको नहीं देगा बाप 1000 रुपए, किसको देगा? अपने बच्चे को देगा, बेटा तुम इसको दे, पास नहीं ना पैसे, रोज तेरे को तंग करता है, फिर 1000 रुपए भी मानता है, कहता है 1000 तो मैंने तेरे को दिया था, 200 रुपए ब्याज भी तो हो गया ना, अभी 1200 रुपए दे, तो बाप क्या करता है 1200 रुपए दे देता है, नहीं कि तू 1200 रुपए दे दे चलो चुप तू कर, नहीं तो बाप ऐसे बाप क्या करता है, बच्चे तुम्हें दुख तो सहना ही पड़ेगा, तुम दुख तो तुम्हें देगा वो, ये देगी वो, किंतु तुम्हें मैं सहन शक्ति दे देता हूँ, ठीक है? क्या देता है बापा हमको? सहन शक्ति दे देता है। हमारे घर में कोई बीमार है ना, वो मरने वाला है, तकलीफ बहुत है, हम कहे बाबा इसको ठीक कर दो ना, ये तो मरे नहीं ना, तो बाबा क्या करे, मरने से रोक देगा उसको? हमें उससे बहुत प्यार है, मरने मरे नहीं वो तो, है ना? नहीं बाबा, वो मरेगा जरूर, किंतु बाबा आपको उस सिचुएशन को सामना करने की शक्ति दे देगा, ठीक है? नहीं, कोई बात बहुत बड़ी हो गई है और आप उसको, आपको बहुत बड़ी बात है उसको, उसको आप बस बहुत दोनों सब जगह बात फैल गई थी किंतु अभी आपको पता लगी, तो किंतु आप सबको बताना चाहते हैं, किंतु बाबा आपको समाने की शक्ति दे देगा। कोई आपको रोज तंग करता है फिर भी आपको आके तंग मांगता है, आपसे कुछ सहयोग मांगता है, तो क्या करेगा? भले वो मांगे, आप सहयोग करने की शक्ति दे देगा, परखने की शक्ति दे देगा ताकि दोबारा दोबारा गलतियां ना करो, निर्णय करने की शक्ति देगा, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति देगा, समेटने की शक्ति देगा, ठीक है? ताकि आपको वो बात फील ही ना हो, आपका अकाउंट भी चुप्त हो जाए और बात फील भी ना, हमारा संबंध उसके साथ है। जो भी हमारे पति पत्नी माता पिता भाई बहन बच्चे जो भी हैं हमारे आसपास साथ हैं, वो सबसे हमारा क्या है, हमारा ड्यूटी है, फर्ज है, कर्तव्य है, वो हमारा संबंध नहीं है, हमारा क्या है, बंधन है। क्या है वो हमारा, कौन सा बंधन है? लेने देने का बंधन है, उसको संबंध मत समझो। आपने देखा है हम बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है बच्चा, फिर क्या होता है थोड़े दिनों के बाद जब बड़ा होता है शादी हो जाती है, फिर क्या होता है, क्या होता है माताएं बता सकती हैं क्या होता है? भाई भाई भी बता सकते हैं, अनुभव भी है, बड़ी उम्र वाले भी बैठे हैं, क्या होता है फिर? नहीं, बड़े होने के बाद क्या करते हैं, मतलब कई बार सबके तो नहीं, जहां हमारा संबंध ऐसा भी होता है, कहीं जहां ठीक पॉजिटिव भी होते हैं, देने का संबंध होता है उनका, लेने का भी होता है, तो वो ठीक है, तो मान लो कहीं हमारा लेने देने देने का संबंध हमारा है, तो फिर वो उसके बाद जैसे हमारा वो ब्याज खत्म होता है, सब कुछ खत्म होता है, उसके बाद वो तू कौन मैं कौन हो जाता है, नहीं वो दूर जाके रहने लगता है, उसकी पत्नी फोन भी करती है ना, वो बेटा फोन करना चाहे ना अपनी माँ से बात करना चाहे, तो पत्नी रोकती है उसको, तुम क्यों बात करता है उसके साथ, कहां से इतने पैसे आएंगे, अपने ऊपर जितने मर्जी पैसे खर्च करे किंतु अपने हस्बैंड को अपनी मां से बात नहीं करने देती है, नहीं? तो मतलब ये भी मतलब कि पैसे का हिसाब है, एक एक चीज का हिसाब है, एक एक संकल्प का हिसाब है, एक एक बोल का, एक एक कर्म का हिसाब है, एक एक, एक, एक मतलब हर चीज का हिसाब है। जैसे वो अकाउंट चुकता होता है हमारा फिर लेन देन खत्म हो जाता है, तो इसलिए ये ना समझो कि हमारा इसका संबंध है, संबंध नहीं है, इसमें साक्षी होकर रहने की आवश्यकता है। अगर हमको योग में गहराई में जाना है तो हमको ये मतलब इसकी गहराई में जाना, तो आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, इसलिए बाबा मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है, और वो कौन है, चीफ जस्टिस है ना? उसके यहां हेराफेरी होती है क्या? वो उसके यहां बहुत एक्यूरेट, हर चीज बहुत एक्यूरेट चलती है, वो जो है कभी इसमें इतनी से एक छोटी सी भी गड़बड़ नहीं होती है, इसलिए न्याय पूरा 100% मिलेगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने, ठीक है। तो ज्ञान माने एबीसीडी। तो जैसे अभी मुरली में भी क्या होता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ के बैठे हो, शिव बाबा याद है, बाप को तीनों संबंध से याद करते हो, बाप पीछे सदगुरु के संबंध से याद कर, सखा भी याद है, दोस्त याद है। बाबा कहते ना साजन आशिक मशुक का था ना, आशिक मशुक का याद था, आज की मुरली में था। तो बाबा मतलब एक एक संबंध को बार बार, कई बार मुरली में कौन सा संबंध, कभी कोई संबंध, कभी कोई संबंध को बार बार लेके आते हैं, और फिर डी फोर ड्रामा, सृष्टि के आदि मध्यंत का राज, सुदर्शन चक्र घुमाओ, है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, कोई कुछ भी कहे तो मीठा बोलो, सहनशीलता के देव देविया बनो, है ना। तो बाबा की मुरली में क्या होता है, ये एबीसीडी तो होता है ना, नहीं होता है, चारों सब्जेक्ट भी होते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट भी होते हैं। तो बेसिकली बाबा की मुरली क्या है, एबीसीडी है ना। तो बाबा ज्ञान का सागर है। तो क्या क्या है बाबा, तो बाबा जब हम ज्ञान, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अशरीरी आत्मा हूं, और बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, मतलब एबीसीडी का सागर है। मतलब वहां से जैसे मैं, मेरी बुद्धि वहां चलेगी ना, तो मुझे जैसे ना कपड़े, जैसे कपड़ा होता है ना, भट्टी जैसे होती, भट्टी का मतलब क्या होता है, योग भट्टी का अर्थ समझाया इनको, कल बताया था योग भट्टी क्या अर्थ है, क्या योग भट्टी का क्या अर्थ बताया था, कोई बताए योग भट्टी का क्या अर्थ बताया था, कोई बताए आप में से, भाइयों में से या बहनों में से कोई बताए, हाँ, आत्मा परमात्मा का मिलन, भट्टी का मतलब परिवर्तन है ना, भट्टी का मतलब परिवर्तन है, भट्टी का मतलब जैसे आपको शायद पुराने जमाने में पता हो, अभी तो कर नहीं, अभी तो नहीं होता, मैं समझता हूँ अभी भी होता हो पता नहीं, पहले तो हमारे जहां भी हम रहते थे वहां पर एक रंगने वाला भाई होता था, भट्टी ना, रंगने की भट्टी होती थी ना, उसमें रंगते थे कपड़ों को ना। तो पहले जो कपड़ा था ना, पहले उसको डीकलराइज ब्लीचिंग करते थे, कपड़ा सपोज मेरा नीले रंग का कपड़ा है, पहले जमाने में इतने पैसे नहीं थे, तो कपड़े माता पिता कपड़े, मतलब स्कूल बदला, ड्रेस बदल गई, अब माँ बाप को नया कपड़ा देके नहीं देते थे, उसी को फिर ब्लीच करा के दूसरा रंग चढ़ा के फिर वो दूसरे कपड़े वो ड्रेस बना देते थे, है ना। तो कपड़ों को रंगा जाता था, तो मतलब पहले ब्लीच करते थे, मतलब नीले रंग का कपड़ा है उसको पीले रंग का करना है, या हरे रंग की ड्रेस हो गई अभी, तो जैसे मतलब जैसी ड्रेस जो हुई तो उसको पहले ब्लीच करते थे ना, पहले ब्लीच करते थे फिर उसको रंग में डुबोते थे, रंग में डुबोने के बाद, रंग में डुबोने के बाद क्या करते थे, रंग में डुबो दिया, रंग में डूबने के बाद क्या होगा, वो क्या कलर चढ़ गया क्या, नहीं कलर चढ़ता नहीं, फिर उसको उसमें भट्टी पे चढ़ाते थे, उस रंग में डाला हुआ ना कपड़े को भट्टी पे चढ़ाते थे, भट्टी पानी पड़ा होता, बड़ी बड़ी कढ़ाइयां होती थी उसमें पानी उबालते थे, तो पानी वो रंग फिर उसके अंदर चला जाता था, है ना, फिर उसको सुखाते थे, रंग चला गया ना फिर सुखाते थे, सुखा के फिर कपड़ा बहुत गुंजल वाला पड़ जाता था, गुंजल नहीं गुंजल समझते, वो सलबटे बहुत सारी पड़ जाती थी, फिर उसके बाद उसको प्रेस करते थे ना, प्रेस करके फिर कपड़ा तैयार होता था, मतलब पहनने लायक उसको, मतलब उसकी ड्रेस जो बनानी है, या बनी बनाई शर्ट होती थी पहले, तो बनी बनाई निकल्स होती थी, पैंट होती थी, उसको फिर हम यूज करते थे ना। तो पहले जमाने में ऐसा था, अभी तो खैर ऐसा शायद लोग फाड़ के पुराना पड़ गया, दूसरा कपड़ा ले लिया, कर लिया, पैसे की कमी नहीं है, उसमें पैसे की बहुत कमी होती थी आज से 40 साल पहले। तो ये है मतलब भट्टी में ये परिवर्तन होता है, भट्टी मना परिवर्तन, नीले रंग का कपड़ा था अभी कैसा होगा, पीले रंग का कपड़ा हो गया, ठीक है, एकदम काले रंग का कपड़ा था अभी पीले रंग का हो गया ना, पीताम्बर बन गया ना, काला कलयुग था अभी कैसा हो गया, पीला पीताम्बर बन गया। तो ये भट्टी मना परिवर्तन, इसमें भी क्या है, पहले हमें क्या करना पड़ता है, ब्लीच करना पड़ता है, ब्लीच मना जो कुछ हमने अभी तक सीखा हुआ है दुनिया में, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो भी बातें हमने सीखी हुई हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है किताबों में, साइंस की किताबों में, धर्मशास्त्रों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, जो टीवी में सुना हुआ है, अखबार में पढ़ा हुआ है, कहानियां पढ़ी हुई हैं, किससे कहानियां पढ़ी हैं, जो कुछ भी सुना हुआ है उसको सबको ब्लीच करो, स्लेट को भी कुछ साफ कर दो, पहली बार ये इस भट्टी में आके करना होता है। सबसे पहला स्टेप यह है भट्टी का, कि जब आओ बाबा को, आपके बचपन से लेकर आज तक जो भी हमसे गलत काम हो गए, जो कुछ हमने सुना, जो बिलीफ सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम्स हैं, उसके बगैर मैं रह नहीं सकता, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती, वो बहुत जरूरी है, ऐसा है वैसा है, वो सबको लिख दो बाबा, ये मेरी ये हालत है, मन की हालत है, ये मेरे मन में ऐसे ऐसा होता है, मेरे मन में ऐसा ऐसा होता है, मुझे बार बार वो याद आता है, मुझे बार बार ये ऐसा होता है, बार बार उसकी याद आती है, बार बार मैं इसके, मुझे खाने का बहुत शौक है ना, मुझे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे मुझे डर लगता है अंधेरे में जाने से, मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मुझे सांप से डर लगता है, मुझे सपने डरावने सपने आते, जो भी आप, जो भी गलत मतलब जो रिकॉर्ड हुआ हुआ अभी तक है ना, जो आपको याद है वो सब लिख दो कागज पे, ठीक है, लिख के साइन करके सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, ठीक है, बाबा को सरेंडर कर दो, ब्लीच कर दो, क्या कर दो, ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको ब्लीच कर दो ना, ब्लीचिंग पाउडर कौन सा है, ये बेहद की वैराग्य वृद्धि, ठीक है, देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है, क्योंकि इनमें से कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, ये दे जाएगी नहीं, देह के संबंध, मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करता है, कहता पापा मैं तो आपके बगैर रह नहीं सकता, अभी मैं शरीर छोड़ू तो साथ जाएगा वो, साथ में जाएगा, पत्नी को बहुत प्यार है, एक मिनट मेरे बगैर रह नहीं सकती, साथ तो जाएगी ना, मैं मरूंगा तो ना शरीर छोड़ू नहीं जाएगी, पति पति कहता मेरे को आपके बगैर रह नहीं सकता, तो क्या होता है, साथ में जाएगा ना, नहीं जाएगा, किसी का साथ में गया ना आज तक, दो चार तो गए होंगे साथ में, दो चार भी नहीं गए, कोई ऐसे कहानी नहीं कहां पे दो चार साथ में गए हो, नहीं गए, तो कोई भी साथ नहीं जाएगा ना, तो देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार साथ में जाते हैं? नहीं जाते हैं, देह के पदार्थ, पैसा, चलो भी पैसा है कोई चीज है, इसी में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको मैं ना, ताकि बहुत बोर तो नहीं हो रहे आप, तो इसमें ना एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, एक बार क्या था, एक दर्जी था और एक सेठ था, तो दोनों दोस्त थे, बचपन से क्लास में साथ पढ़े थे, तो उसके बाप का बिजनेस था, वो दर्जी, वो सेठ बन गया, वो दर्जी दर्जी रह गया, दर्जी के बाप दर्जी का बच्चा था, दर्जी वो दर्जी बन गया, पर दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो दर्जी के भी लड़का था एक उसी उम्र का और सेठ का भी लड़का था, दोनों मतलब वो भी आपस में दोस्त थे, अमीर गरीब तो थे किंतु दोस्ती अच्छी थी, एक दिन दर्जी मर गया, बूढ़ा हो गया था, 60 साल के आसपास हो गया था, मर गया अचानक, कुछ तकलीफ हुई, तो सेठ दर्जी ने तो अपने बच्चे को सारा काम सिखा दिया था, दुकान का संभाल दुकान संभालवा दी थी कि तुम ये दर्जी काम भी सिखा दिया, जब दुकान पे काम करना शुरू कर दिया था पहले मरने से पहले उसने, तो सब काम उसको आ गया था, दुकान उसको पहले से उसको दे दी थी, तो दर्जी का बच्चा अपना काम करना शुरू कर खुश रहता था, कमाई भले कम थी, सेठ जो था उसको अपने बच्चे पे विश्वास नहीं था, पैसा बहुत था उसके पास, बहुत धन था, बहुत फैक्ट्री थी, बिल्डिंग्स थी, तो उसके बच्चे को अपने बच्चे को नालायक समझता था, उस पर विश्वास नहीं था, पैसा था तो उसको ये शायद पैसे को बिगाड़ देगा, खो देगा, है ना, उसको विश्वास नहीं था, तो बच्चा बहुत दुखी होता था, सेठ का बच्चा, तो अपने दर्जी दोस्त से मिलता ना, तो उसको वो कहता था कि मेरा बाप तो मुझे विश्वास ही नहीं करता है, मुझे कुछ समझता ही नहीं है, है ना, तो उसने कहा कोई बात नहीं दोस्त, मैं एक दिन आऊंगा तुम्हारे घर, तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा, उनको समझाऊंगा, तो एक दिन दर्जी का लड़का जो है उसके पास गया, सेठ के पास, उसने कहा अंकल मुझे ना रात में मेरे पिताजी सपने में आए थे, तो उसने कहा अच्छा सपने में आए थे, क्या कह रहे थे, क्या 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 कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि बेटा मैं ना ऊपर आ गया, जल्दी जल्दी मैं ऊपर आ गया, मैं सुई लाना भूल गया ऊपर, सुई होती ना, सुई ऊपर लाना भूल गया, ऊपर भी कभी काम होता है ना, वहां पर स्वर्ग में कुछ काम वाम होता है ना, किसी को तो कपड़े लोग सिलना दे देते हैं, तो मेरे पास सुई नहीं होती, सुई की बहुत ऊपर तो सुई है नहीं, तो सुई जो है तुम ऐसा करना, जो सेठ जी है ना, आप सेठ जी के पास है ना, सेठ जी की भी आने की वो डिस्कस हो रहा था, तो ऊपर तो उनकी आने की तारीख भी नजदीक आ गई है ना, आने वाले जल्दी आने वाले हैं, तो उसको एक सुई दे देना, जब वो आएंगे तो सुई उनको कहना सुई ऊपर लेते आए, तो उसने सुई, उसने कहा पिताजी अंकल ये आप ऊपर जाओगे ना, तो सुई जरा मेरे पिताजी को ऊपर वहां मिलेंगे, मेरे पिताजी उनको सुई दे देना, तो सेठ ने सुई तो पकड़ ली, फिर सोचने लगा दर्जी सुई लेकिन नहीं किया जिसका जीवन ही शुरुआत ही सुई से हुई थी है ना, और अंत भी सुई से हुआ अब मैं इस सुई को लेके जाऊंगा क्या? उसने कहा सुई तो साथ में जाएगी नहीं। फिर उसने सोचा सुई साथ में नहीं जाएगी, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा मकान और ये सब, इतना संपत्ति, ये साथ में जाएगी क्या? फिर उसको अंदर से रियलाइज हुआ कि इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जिसपे हम अपना कितना समय लगाते हैं, कितना समय इस पे हम व्यर्थ गवाते हैं, हमारा समय कहां जाता है बताओ? तीन एनर्जी हमारे पास है। बाबा को हमसे पैसा नहीं चाहिए, बाबा को हमसे पैसा नहीं चाहिए, बाबा दाता है। बाबा को तीन चीज चाहिए हमसे सिर्फ, एक तो समय चाहिए, संकल्प चाहिए और एनर्जी चाहिए। सिर्फ बाबा को हमसे तीन चीज चाहिए। बाबा कहते अपना समय, संकल्प और एनर्जी, ये तीन चीजें आप मेरे कार्य में लगाओ, मुझ में लगाओ, समय लगाओ, अपने संकल्प मेरे लिए चलाओ और अपनी एनर्जी शक्ति मेरे लिए खर्च करो, मुझे आपको पैसा नहीं चाहिए। तो तीन चीजें बाबा को चाहिए, तो ये तीन चीजें हमें लगानी है सिर्फ, है ना। तो ये जो हमने जो पैसा और हम कहा, हमारी एनर्जी कहां जा रही है, हमारा समय कहां जा रहा है, हमारे संकल्प किस में लग रहे हैं? आप देख लो अपने जीवन को, आप 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 40 साल के, 25 साल के हो गए, बच्चे बैठे आगे 25-30 साल के भी हो गए हैं ना। तो आपके अभी तक कितना परसेंट समय आपने बाबा में लगाया और कितना परसेंट समय आपने इस देह के संबंध निभाने में, देह के स्वभाव संस्कार में और देह के पदार्थों में लगाया, कमाने में, उनको समेटने में, साफ करने में। टेबल साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कि तो ये कभी साफ करते हैं क्या? करते हैं सब। झाड़ू लगाएंगे, माताओं को इतनी फिक्र रहती, फर्श गंदा हो गया, चीजें गंदी हो गई, मैं गंदी चीज देख नहीं सकती, अंदर जो गंदगी भरी हुई है उसको वो कैसा, वो ऐसी, वो वैसा, उसको तो ये जो है अपने अंदर, तो बाबा को तो ये हमको अंदर से अभ्यास करना है, ठीक है ना। तो अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो ये हमको बेहद की वैराग्य वृत्ति में बताया। अंतर्मुखता के बाद क्या बताया था मैंने? एकांतवासी ना, सॉरी वो तो कहां पहुंच गया मैं अभी, हाँ ब्लीच, हम भट्टी, हम बता भट्टी, भट्टी की बात है ना। तो ये हमको ब्लीच कर दो बिल्कुल, ठीक है। दे के संबंध, दे के स्वभाव संस्कार, दे के पदार्थ एकदम ब्लीच करके निकाल दो, तब हमारा असर लगेगा। तो ये जो है, जब पहली बात हमको ये करना पड़े, फिर दूसरा रंग, ये ज्ञान फिर रंग है, फिर ज्ञान के रंग में डुबो दो। अगर ज्ञान का रंग एक बना के डब्बे में रंग डाल के पानी में ला के उसमें बर्तन को, कपड़े को ऐसे डालो और डाल के फिर क्या करो, निकाल दो, तो रंग लग गया क्या? नहीं लगेगा। उसमें घंटों पड़े रहना पड़ता है, ओवरनाइट। पहले आपको पता है कपड़े को पहले ब्लीच करते थे ना, हम देखते थे खड़े खड़े ना, हम स्कूल से आते थे, हम देखते थे कैसे ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के बाद फिर वो क्या करते थे, रंग में कपड़े में डाल देते थे। फिर हम पूछते भैया आप क्या करेगा, कहते इसको साइड आते ऐसे पड़ा नहीं देंगे। फिर अगले दिन वो भट्टी चढ़ाता था, फिर भट्टी चढ़ा के अगले दिन उबालता था, है ना। तो इसी तरह से सारा वो फिर साइड रंग में डूबा रहता है कपड़ा। फिर सारा दिन हमको क्या करना पड़े, इसी ज्ञान के रंग में डूबा के रखो। जो बाबा ने मुरली सुनाई ना, उसी में डुबो के रखो। सारा दिन वही चलता रहे, उसी रंग, वही रंग चलता रहे। बाबा ने आज क्या सुना है, बाबा ने कहा कदम कदम पे राय लो, है ना। खुश राजी रहने के लिए कदम कदम पे राय लेनी है। वरदान संपन्नता और संपूर्ण बनने के क्या करना पड़ेगा, है ना, कैसे करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब वो एक एक बात बाबा की, एक एक बात बाबा की, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, उसका मनन करो, चिंतन करो, मंथन करो, सिमरण करो। तो वो कैसे हमको सारा दिन करना, वो ज्ञान में डुबो के रखो। फिर डुबोने के बाद क्या करो, फिर उसको भट्टी चढ़ाओ, भट्टी में ना योग में डालो, फिर योग लगाओ, एक एक बात पे योग लगाओ जो बाबा ने कहा, है ना। आज जैसे बाबा ने योग की बात की, बाबा ने कहा भले तुम एक धारणा नहीं होती है, तो क्या करो, सिर्फ दो बात मजबूत कर लो। क्या कर लो, दो बातें कौन सी मजबूत कर लो? एक तो बाप को याद करना है, ठीक है, हर समय हर घड़ी बाप को याद करना है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहना। दूसरा क्या बताया, मधुबन और घर को याद करना है। ये मधुबन है ना, ये बाप की कर्म भूमि है ना, यहाँ का चप्पा चप्पा उसको याद करो, बाबा कमरा, बाबा की झोपड़ी, बाबा का शांति स्तंभ, बाबा का हिस्ट्री हॉल है ना। जैसे अमृत वेला कहाँ करो, कहाँ करोगे अमृत वेला? नीमच में रहोगे कहाँ करोगे अमृत वेला? बॉम्बे वाले कितने भाई बहन बैठे हैं, आते जो बॉम्बे से आए, तो बॉम्बे वाले कहाँ अमृत वेला करेंगे, नीमच वाले कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे? अच्छा ये बताओ, आपका घर यहां से कितनी दूर है, बॉम्बे या नीमच कितने दूर है यहां से, कितने दूर है? 300 किलोमीटर, बॉम्बे 750 किलोमीटर। कितनी देर में पहुंच सकते हो यहां से, कितनी देर में पहुंच सकते हो? सोचा और पहुंच गए ना। अपने बेडरूम में पहुंचना हो तो, ड्राइंग रूम में पहुंचना हो तो एक सेकंड में पहुंच सकते हैं? कितनी दूर, कितनी दूर है यहां से आपका बेडरूम, कितनी दूर है? एक सोच की दूरी पर है ना। अच्छा बॉम्बे एक सोच की दूरी पर, नीमच एक सोच की दूरी पर है। अब वहां से, नीमच से या बॉम्बे से मधुबन कितने दूर है, अभी कितने दूर है? एक सोच की दूरी पर ना। तो जैसे अमृत वेला योग करने बैठो ना, आप कहां पहुंच जाओ, मधुबन में बाबा कमरे में पहुंच जाओ, ठीक है। अमृत वेला वहां नहीं करना है, कहां पे करना है? मधुबन में बाबा कमरे में, ठीक है, पक्का। क्योंकि संग और वातावरण का बड़ा महत्व होता है, तो वो आप यहां पहुंचो। हम लोग ऐसे ही करते थे, दिल्ली में रहते थे ना, दिल्ली में जब यहां से जाते थे तो अमृत वेला जैसे अपने ड्राइंग रूम में बैठ के हम मेडिटेशन करते थे, अमृत वेला 4 बजे उठ के 3:30 उठते थे और फिर अमृत वेला करते थे, तो तुरंत हम एक सेकंड में बाबा के कमरे में पहुंच जाते थे, बाबा कमरे में बैठ के मेडिटेशन करते थे। फिर मुरली कहां सुनोगे, मधुबन में है ना, मधुबन में, यहाँ ओम शांति भवन में। कितनी दूर है ओम शांति भवन आपके घर से, आपके सेंटर से? भले मुरली वहां सुन रहे हो, किंतु अपनी सोच के द्वारा यहां पहुंच जाओ, ओम शांति भवन के पहले सोफे पर बैठ जाओ, कोई मना नहीं करेगा, भले यहां बैठा हो कोई भी, आप आके बैठ जाओ, ठीक है नहीं? कोई का खाना, खाना कहां बैठ के खाओगे, मधुबन में भंडारा है ना जो, वहां बैठ के खाओगे, ठीक है। खाना खाने अपने घर में टेबल बैठे और सोच के बस यहां पहुंच जाओ बाबा के, ठीक है। तो मधुबन को, मधुबन घर जहां बाबा की कर्म भूमि और परम। अभी हम शांतिवन में रहते हैं ना, शांतिवन से भी हम शांतिवन में योग नहीं करते हैं। हम संकल्प से यहां पहुंच जाते हैं, अमृत वेला मुरली सब कुछ यहीं पहुंच जाते हैं ना, तो ये ठीक है। तो इस तरह से बाबा की जो मुरली है ना, इसको जैसे अपने और उसको फिर एक ही चीज को, उसको एक एक बात को, बाबा की एक एक बात ले लो, एक एक बात है ना, एक एक बात में चले जाओ। संडे की मुरली थी ना, अलंकार, देहंकारी नहीं बनना, अलंकारी बनना है ना, चारों अलंकार, सुदर्शन चक्र, ज्ञान गदा और कमल पुष्प और शंख है ना, चार चतुर्भुज विष्णु माना, जिसमें विष का एक भी अणु ना हो। विष्णु कोई व्यक्ति नहीं है, विष्णु स्थिति है, गृहस्थ धर्म की स्थिति है। ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या जिसकी चार भुजाएं हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक स्थिति की निशानी है, गृहस्थ धर्म के, पवित्र गृहस्थ धर्म की स्थिति की निशानी है। इसमें पति पत्नी दोनों कैसे हैं, जिनमें एक विष का एक अणु भी नहीं है। सुदर्शन चक्र घूमता रहता है, ज्ञान की गदा जिसे मायाजित, योग की गदा जिसे मायाजित बन के रहते हैं, और कमल पुष्प मन पवित्र रहते हैं, और शंख सदा निरंतर सेवाधारी, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में सेवा करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया था, अंतर्मुक्ता, एकांतवासी, और दो ही बताए थे ना अभी, अंतर्मुक्ता और हाँ एकांतवासी। एकांतवासी भी चल रहा था ना, बेहद की वैराग्य तो पहले खत्म हो गई है ना, तो अभी जो है अंतम, इसमें मैं बैठा था भट्टी, भट्टी के ऊपर जैसे बताया ना, तो योग का एक चीज का वो करो, ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट को उबालो, उसमें उबलो ताकि रंग अंदर चला जाए, अंदर रंग उतर जाए गहराई से, और फिर उसके बाद फिर वो सुखाओ उसको, है ना, सुखाओ ना, फिर ऐसे तो ना कपड़ा गर्म गर्म हो गया फिर सुखाना पड़ता है ना, सुखाओ उसको, धूप में सुखा दो, धूप में नहीं सुखाते, हल्की छाया में सुखाते हैं, धूप में सुखाएंगे तो कपड़ा खराब हो जाएगा रंगने के बाद, है फिर सुखाना पड़ता है ना, सुखाओ, सुखाने के बाद फिर क्या करते हैं, तो इसको प्रेस करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब आपने योग करने के बाद उसको फिर जीवन में एक एक कर्म में लेके आओ, सुखाना माना बहुत तेज धूप में नहीं, आज के बाद तुम करो, आज अंतर्मुखी हो जाओ, बोलो ही नहीं किसी से, है ना, अंतर्मुखी का मैं ये नहीं किसी से बोलना नहीं, ऐसा नहीं है ना, किसी से बात करनी बंद कर दो, मुंह पे बैज लगा दो या मुंह पे टेप लगा दो, किसी से बोलना नहीं, मुझे कोई कर्म नहीं करना, ऐसा नहीं है, अंतर्मुखी का एकांतवासी का मतलब ये नहीं है, तो मतलब हमें हमें ठंडा करना है पहले उसको, ठीक है, अब कर्म लाके उसका प्रैक्टिकल स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त, है ना, उसको ला करके फिर हमें उसको प्रेस करना है, प्रेस मतलब अब उसको अपने जो भी हम कार्य व्यवहार है, कोई डॉक्टर का डॉक्टर है, कोई घर में काम करने वाले हैं हम, खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं माताओं को, या और ऑफिस में जाना पड़ता है, या कुछ भाई बहनों कुछ बिजनेस में जाना पड़ता है, जो भी कार्य व्यवहार उसके अनुसार उसको प्रेस कर दो, ठीक है, प्रेस करके मतलब धारणा में आ गया अभी, ठीक है, और धारणा में आने के बाद फिर उसको उससे सेवा करो, तो चार सब्जेक्ट हो गए ना, ज्ञान योग धारणा और सेवा, ये भट्टी की मतलब है ना, ये भट्टी का अर्थ है ना, ताकि अब जब यहां से जाओ तो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट आपके परफेक्ट हो जाए, पक्का, तो इस तरह से तो मैंने बताया ज्ञान सॉरी अंतर्मुखता एकांतवास, एक एक के अंत में खो जाओ, ज्ञान सागर के अंत में खो गए, पवित्रता के सागर के अंत में खो जाओ, फिर दूसरा क्या है, ज्ञान से एबीसीडी से पवित्रता आती है, जितना एबीसीडी को करो ना मन बुद्धि पवित्र होती जाती है, पवित्रता आ गई, पवित्रता से शांति आती है, शांति माना विचार कम हो गए, जितना एबीसीडी रियलाइज करते जाओ ना, हमारे नॉर्मली 15 विचार एक मिनट में चलते हैं, जिसमें 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड में होते हैं, 7-8 विचार सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो जैसे हम एबीसीडी को अंदर रिवाइज करते जाते हैं, रियलाइज करते जाते हैं, तो हमारे विचारों की संख्या कम होती, हमारे जो विचार सबकॉन्शियस माइंड के विचार खत्म होते जाते हैं, सिर्फ कॉन्शियस माइंड में हमारे जो विचार रह जाते हैं, मैं आत्मा हूं, एबीसीडी का मतलब क्या, मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, जो आठ संबंध नौ संबंध है ना, उनको एक अनुभव करो, डी फोर ड्रामा, संसार एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें सब आत्मा एक्टर्स हैं, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, और कर्म और मेरा बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इससे जो हुआ अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा होता है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे बार बार इसको रिवाइज करो मन में और रियलाइज करते जाओ, सचमुच मैं ये हूं, मेरा बाबा वो है परमधाम में बैठा है, मैं आत्मा ही परमधाम की रहने वाला हूं, वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है, कैसे वो माँ है कैसे बाप है, उसकी फिर और गहराई से भी क्लास होनी चाहिए, उसकी कैसे माँ बाप, कैसे माँ की अनुभूति बाप की अनुभूति आप उनसे करोगे, अच्छा यही योग है, योग कोई और चीज नहीं है, योग का मतलब संबंध से उसको याद करना, और संबंध से ही हमें स्नेह मिलता है, संबंध से ही प्राप्ति होती है, तो संबंध और स्नेह से जब याद करते हैं और प्राप्ति, तीन चीज के आधार पर योग होता है, संबंध के आधार पे, स्नेह जिसको जिससे हमारा स्नेह होता है तो भी हमें उससे उसकी याद आती है, और प्राप्ति जिससे हमें प्राप्ति होती है उसकी भी याद आती है, उससे भी हमारा योग लग जाता है ना, ऑटोमेटिक लगा रहता है उससे हमारा योग, तो स्नेह संबंध और प्राप्ति तीन आधार पे हमारा योग, इसकी एक एक की अनुभूति में चले जाओ, इसी को योग कहते हैं, तो जब इसको बार बार हम अभ्यास करते जाएं तो इस तरह से तो हमारे विचार कम होते जाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड माना जो फाइल्स हमने अनडिसाइडेड फाइल्स हैं, हमारे ना जो फाइल हमने जो डिसाइड कर ली, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, वो तो चली गई मेमोरी में, वो तो हमारे कॉन्शियस माइंड में चली गई, और जो फाइल अनडिसाइडेड है, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर में एक डस्टबिन होती है, बिन होती है ना, एक जो फाइल हमारी हम डिसाइड नहीं करते, टाइप कर लेते कि तो फिर तो वो फाइलें कहां चली जाती है, बिन में चली जाती है ना, अनसेव्ड फाइल्स, तो वो फाइल वहां चले जाते हैं, तो वो फाइल्स उसको सबकॉन्शियस माइंड हमारा है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते करें ना करें। जैसे बच्चों के बारे डिसीजन नहीं ले पाते, बच्चे कहना मानेगा नहीं मानेगा, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं, होएगा नहीं होएगा, है ना। तो वो सब सबकॉन्शियस माइंड, जब हम बार बार ABCD ये सब निश्चित है, जब इसको हम बार बार रियलाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो ये फाइलें कहां जाती हैं हमारे, है ना। ABCD तो कहां जाएगी, कॉन्शियस माइंड में जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड की फाइल डिलीट होती जाती है अपने आप, है ना। तो हमारे विचार कम हो, जब 8 विचार रह जाते हैं तो ये एक्चुअली आत्मिक स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, आत्मिक स्थिति कहते हैं ना, आत्मिक स्थिति। फिर हमको फील होने लगता है 15 विचार पे ना हम शांत है ना अशांत है, किंतु 8 विचार पे हम शांत हैं। अंदर ठंडा ठंडा लगने लगता है, अंदर जैसे हम जाते हैं ना ऐसे ABCD को आप अभी रियलाइज करना शुरू करो, अंदर जाओ रियलाइज करो, अंदर अंदर जाओ, रिवाइज करो इसको, रियलाइज करो अंदर, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मुझे आत्मा से एनर्जी सारे शरीर में फैल रही है, मैं आत्मा ही शरीर को चला रही हूं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा के संतान हूं, जो 7 एनर्जी के सागर है, 7 गुणों के सागर है, उनसे वो एनर्जी मुझ में आ रही है, मेरे सरल संबंध उनके साथ है, वो मेरी मां है, माँ के रूप में देखो उसको, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा, ब्रह्मा के तन में जैसे आज के मुरली थे ना, शिव बाबा हर काम ब्रह्मा के थ्रू करता है, माँ का प्यार भी ब्रह्मा के थ्रू देगा, बाप का प्यार भी उसके थ्रू देगा, है ना, टीचर का प्यार भी उसके टीचर के उसके थ्रू पढ़ाएगा, सतगुरु भी उसके थ्रू करेगा, है ना, दोस्त भी उसके थ्रू है, बंधु मतलब उसके थ्रू है, भाई भी उसके थ्रू है, दोस्त भी उसके थ्रू है, साजन भी उसके थ्रू है, सर्जन भी उसके थ्रू है, और बच्चा भी उसके थ्रू है ना। शिव बाबा अकेला कुछ नहीं करता है, सारा काम किसके थ्रू करता है, ब्रह्मा बाबा। तो एक एक रूप में देखो, मां के रूप में ब्रह्मा मेरी मां है ना, उसकी गोद में चले जाओ, बाप है, मां के रूप में क्या करता है, जैसे हम जन्म लेते हैं ना, तो बाबा हमको पैदा होते ही क्या करता है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे देता है, क्या देता है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट गिफ्ट में देता है, जैसे पैदा होने पर जन्मदिन में क्या देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं ना, तो हमें कौन सी गिफ्ट दी बाबा ने, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट दे दी है, जन्म से ही, जन्मते ही लिफ्ट क्या करती है, लिफ्ट 1 सेकंड में हमें क्या पहुंचा देती है, कहां पहुंचा देती है। अब मान लीजिए आपको चांद पे जाना हो, या मान लो चांद से किसी को धरती पर आना है, तो चांद से वो धरती पर उतरा, वो कहां उतर गया, अमेरिका में उतर गया, और उसको माउंट आबू आना था, माउंट आबू कितने दूर धरती से, वहां से अमेरिका से, वहां से आने में कितनी देर लगेगी यहां पर, 1 सेकंड नहीं लगेगा, वहां से 24 घंटा की फ्लाइट लेनी पड़ेगी, पैसे लगेंगे बहुत, 70-80 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे ना आते आते इधर ना, और फिर वहां से अहमदाबाद आएगा, अहमदाबाद से फिर कार लेके इधर आएगा ना। तो मान लो हम सूक्ष्म वतन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, यहां से सूक्ष्म वतन लिफ्ट गई, फिर वहां से बाबा कहां मिलेगा, बाबा पता नहीं कहां बैठा है ना, मुश्किल ढूंढना मुश्किल हो जाए, नहीं सूक्ष्म बड़ा है ना, छोटा है बड़ा है, धरती जितना है धरती से बड़ा है, धरती से तो बहुत बड़ा है ना। तो सूक्ष्म वतन में भी ये लिफ्ट कहां जाती है, सीधा बाप दादा की गोद में जाके उतारती है, कहां जाती है, बाप दादा बैठा है और उसकी गोद में जाके उतारती है, कहीं और नहीं। किसी को अगर ओम शांति भवन के स्टेज पे आना है तो सीधे ओम शांति भवन के स्टेज पे कौन, कोई प्लेन आएगा क्या, आएगा प्लेन, रॉकेट इधर आएगा क्या, नहीं। क्योंकि लिफ्ट बड़ी वंडरफुल लिफ्ट है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट ना, एकदम बाबा की गोद में जाके उतरती है, तो 1 सेकंड में जाओ बाबा की गोद में पहुंच गए। इसका ईंधन क्या है, शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प क्या, मैं अनादि आदि अविनाशी पावन सतो प्रधान आत्मा, ओरिजिनली मैं अनादि ब्रह्मधाम में भी पवित्र हूं और सत्युग में सत्युग त्रेता में पवित्र हूं। द्वापर में शूद्रों की देन है अपवित्रता। ये विकार कहां से मिले? शूद्रों से मिले, हमारे नहीं है। मैं वापस ब्राह्मण बन गया हूं, शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं? आपको कोई आपके घर में आपके सफाई करने वाली आती हो और वो आपको खाने को कुछ बना के लेके जाए, आप खाएंगे? घर में खाएंगे? नहीं खाएंगे, खाएंगे ना, कोई अंजा नहीं खा सकते। अभी तो इतना, अभी तो बाबा ने, अभी तो हमारे देश में प्रथा खत्म हो गई, पहले तो बहुत डिफरेंशिएशन होता था, है ना, तो नहीं खा सकते ना, नहीं खा सकते, खा सकते। तो अब मतलब जो है वो स्थिति, तो शुद्रोक चीज ब्राह्मण यूज कर सकते हैं, तो ये चीज तो हमारी है ही नहीं, है ना। तो अपवित्रता शुद्रों की देन है और ब्राह्मण उसको यूज ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये मैं कौन हूं, है ना, अनादि आदि अविनाशी पावन सत्व प्रधान स्थिति, इसको अनुभव करो, ठीक है ना, इसको अनुभव। तो मैं कैसे हूं ना, इस तरह से बार बार अपने आप ये चिंतन करो निरंतर ना, तो फिर क्या होगा आपकी, और ड्रामा से विचार बढ़ते हैं ना, ये इसने ऐसा किया तो ऐसा कैसे हो जाएगा, धंधा खराब हो जाएगा, आमदनी खत्म हो जाएगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, इसने धमकी दी है, ये उसे ऐसा कर लेगी, ऐसा कर लेगा तो क्या हो जाएगा, है ना, बच्चा फेल हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ है अच्छा हुआ, जो होना, जो होने वाला है बहुत अच्छा, हर चीज में कल्याण है, फेल होने में भी कल्याण है, पास होने में भी कल्याण है। तो ऐसे बार 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 अपने आप से बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह से करेंगे तो हमारे अंदर पवित्रता है, विचार कम हो जाएंगे, 10 विचारों को थोड़ा शुद्धता आएगी, 8 पे शांति आएगी। तो शांति माने पॉजिटिव विचार और कम विचार, तो आपको फील होने लगेगा कि मैं थोड़ा सा देह से शांति की फीलिंग अंदर आएगी, थोड़ी सी ये मैं देह से कुछ अलग हूं ऐसा फील होगा। तो ये आत्मिक स्थिति की शुरुआत है शांति, इसलिए कहा ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप। जैसे शांति फील होगी तो अपने आप को आप थोड़ा देह से अलग फील करना शुरू करें, आत्मा की रियलाइजेशन थोड़ी शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही विचार आपके साथ होंगे, 6 होंगे, तो क्या होगा, 6 पे क्या होगा, और विचार स्लो हो गए, फिर आपको फील होगा नहीं मैं दूसरों की किया, दूसरे भी तो आत्मा है ना, फिर दूसरों के प्रति प्यार, रूहानी प्यार पैदा होगा, अर्थात आप दूसरों को केयर करेंगे, उसकी डिग्निटी भी को मेंटेन करेंगे, डिग्निटी को आदर देते हुए उनको दूसरों को प्यार करेंगे, अर्थात केयर करें। प्यार का मतलब कोई ऐसे नहीं मुंह को ऐसे ऐसे कर दिया उसे प्यार कहते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं, प्यार का मतलब केयर करना और साथ में आदर देना, रेस्पेक्ट देना। केयर को प्यार नहीं कहते हैं, किसी की देखभाल करना उसको प्यार कहते हैं क्या? देखभाल डिग्निटी के साथ करना, एक माँ अपने बच्चे की बहुत केयर करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, सब कुछ करती है, किंतु वो क्या करती है, साथ में उसको डांटती भी रहती है। तो उसके उससे पूछे तुम्हारी माँ बहुत प्यार करती है, तुम्हें प्यार करती है, तो क्या कहेगा बच्चा, क्या कहेगा, अरे प्यार करती है, वो सारा दिन डांटती रहती है, क्योंकि मुंह के बस डांटती है वो, उसको उसको प्यार की महसूसता नहीं, किंतु मेरा राजा बेटा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, तो ऐसे करके उसको करती है ना, केयर करती है, तो उसको फिर प्यार की फीलिंग आती है। ऐसे एक पति है या पत्नी है, अपने अपनी एक पत्नी है अपने पति की बहुत केयर करती है, बहुत उसके लिए ध्यान रखेगी, कपड़ों का, खाने का, हर चीज का एक्यूरेट ध्यान रखती है, जो हर बात में उसको टोकती रहती है, तुम देर से क्यों आए, तुम्हें ऐसा क्यों किया, तुम्हें खाना नहीं आता है, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, क्या होगा, पति क्या करेगा, उसको प्यार की फीलिंग आएगी, क्या बोलेगा, दिमाग खाती है ना, घर नहीं आने को दिल करेगा उसका ना। तो प्यार में मतलब प्यार की डेफिनेशन है केयर के साथ रेस्पेक्ट, तो वहां पर प्यार की, बाबा क्या करता है हमको, हम कितने निकम्मे थे, बाबा क्या कहते हैं, अरे तुम मेरे बच्चे कौन हो, पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना, देवती मेरे से भी ऊंचे हो ना, मैं तुमको नमस्ते करता हूं, तुम सत्युग में ये बनने वाले, विश्व महाराजन बनने वाले हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हो, है ना, आधार मूर्त के अपने को नहीं संभाला जाता अभी तो अपना उद्धार नहीं किया जाता, दूसरों का उद्धार क्या करेंगे, हालत तो हमारी ये वाली थी जब हम आए ना बाबा के यहां में, नहीं तो बाबा हमको ये बोल रहा है तो कितनी रेस्पेक्ट कर रहा है ना, कितनी गलतियां हम करते हैं, गलतियां हम तो भूलों के सागर थे, है ना, कितनी भूले हम करते, कितने देखो जब से ज्ञान में आए हो तब से कितनी भूले की होंगी, रोज 10-15 भूले तो कर देते हैं ना, नहीं करते, फिर भी बाबा क्या करते हैं अमृत वेले, आओ बच्चे आओ आओ, मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा हूं, आ जाओ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो मेरे, बहुत दिल तक नशीन हो, बहुत प्यारे हो, सिकी लदे हो, मेरे नैनों के नूर हो, मस्तक की मणि हो, मेरे गले के हार हो, है ना, तो क्या करता है, केयर करता है, दुख में सुख में है जिस समय देखो तो साथ में आ जाता है, प्यार करता है, कि कोई केयर नहीं करता वो केयर करता है और रेस्पेक्ट भी देता है, तो हमें इसलिए बाबा कहते हैं बाबा स्नेह का सागर है, सबको स्नेह है बाबा से, डाकू को भी स्नेह है, नहीं बड़े से बड़े मर्डरर स्मगलर भी उसको स्नेह करते हैं, है ना, नहीं सबको स्नेह करता है, सबको स्नेह करता है, सबको प्यार करता है, किसी की बुराई देखता है क्या, मां कुछ बच्चा कुछ भी करके आए मां फिर भी गले लगाएगी, आजा 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 मेरे राजा राजा, भले वो बाहर पिटाई करके आए हो लोगों को जेब काट के आए तो आजा राजा मेरे राजा लाल मेरे लाल राजा, नहीं है ना, तो ये बाबा है ना, तो स्नेह माना प्यार माना ये, ठीक है, रियलाइज करते हैं हम, नहीं नहीं मैं गलती मुझसे भी होती है इससे भी हो कोई बात नहीं, गलती होगी रहम दिली ना, रहम दिली से प्यार पैदा होता है ना, तो जब 6 विचार कम हो जाते तो प्यार की फीलिंग आती, फिर सिर्फ 4 विचार जब जाते हैं ABCD रह जाता है तो क्या होता है, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तो क्या हुआ हम कहां निकल गए, ये दुनिया से निकल गए, है ना, ये दुनिया से पार चले गए, कहां चले गए, ये दुनिया से परे चले गए, है ना, तो सिर्फ 4 संकल्प जब रह गए तो क्या हो गया, 4 संकल्प रह गए तो हम क्या हुए, हम हमारे अतिंद्रिय सुख की अनुभूति आने लगी, अतिंद्रिय सुख माना इंद्रियों से ऊपर का सुख, इस शरीर से ऊपर का सुख, आंखों का सुख नहीं, देखने का सुख नहीं, बोलने का सुख नहीं, खाने का सुख नहीं, सूंघने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, छूने का सुख नहीं, ये इंद्रियों का सुख है, इस इंद्रियों से ऊपर का सुख, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरा बाबा कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, रूहानी प्रेम का सागर, अतिंद्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, सर्वशक्तियों का सागर, ऐसे फील कर रहे हैं, मेरे हर संबंध मां के रूप में दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी, 1 सेकंड में बाबा की गोद में पहुंच गए, बाबा की गोद में चढ़ गए, बैठ गए, बाबा से चिपक गए जाके, बाप के रूप में उसने क्या दिया, ज्ञान का 3रा नेत्र दे दिया, मैं अपने को आत्मा देख सकता हूं, दूसरे बाबा को आत्मा देख सकता हूं, परमात्मा को देख सकता हूं, सूक्ष्म वतन को देख सकता हूं, परम धाम को देख सकता हूं, सुख धाम को देख सकता हूं, और किसको देख सकता, कर्मों की गुह्य गति को देख सकता हूं, शिक्षक के रूप में बाबा ने मुझे 3 लोकों का ज्ञान दे दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे दिया, अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, अनादि ज्योति ज्योतिबिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगमयुगी फरिश्ता स्वरूप, और संगमयुगी ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप, सुदर्शन चक्र घुमा दिया, ठीक है, सुदर्शन चक्रधारी बना दिया, किसके रूप में, शिक्षक के रूप में, और सतगुरु के रूप में मुझे वो शक्ति दे दी, मेरे विक्रम विनाश की शक्ति दे दी, बलिदान दे दिया, बच्चे तुम मनमना भव कर्मातीत भव नष्टो मोह स्मृति लब्धा भव अशरीरी भव, है ना, नहीं तो मुझे कर्मों से मुक्त स्वराज्य अधिकारी था, स्वयं मैंने आत्मा, आत्मा का राज्य स्थापन हो गया, किस पे, मन बुद्धि संस्कार पर, 5 कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी बना दिया, बंधु के रूप में सारे बोझ मुझसे हर लिए, बड़ा भाई क्या करता है छोटे भाई से सारे बोझ हर लेता है, और सखा के रूप में क्या किया, सब बातें जो मेरी नेगेटिव बात सब उसको बता देते हैं, दोस्त को बताते हैं, माता पिता को नहीं बताते हैं, सारी बातें, बाबा मेरे अंदर कमी है, बाबा मुझको ये अंदर लगता है, बाबा मेरे को ऐसा लगता है, बाबा मैं इस बात पर विजय नहीं पा पाता, बार बार मुझे अंदर से इरिटेशन होती है, ऐसे करता है ना तो मुझे ऐसे ऐसे अंदर से चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, पापा मेरे को इसको देख के ऐसा लगता है, बाबा इसकी बार बार याद आती है, तो बाबा को हर बात, बाबा मैं कुछ मेरी मदद करो ना, मैं इस बात भूल जाए, ये मेरी मेमोरी से निकाल दो ना, डिलीट कर दो ना, ये मुझे बार बार किया हुआ कर्म याद आता है, आप डिलीट कर दो ना इसको, है ना, तो ये जैसे बाबा से हम बात करते हैं सखा के रूप में, साजन के रूप में क्या सजाता है हमको, कैसे सजाता है, दैवी गुणों से सजाता है, सत्यता से सजाता है, पवित्रता से सजाता है, निर्भयता अंतर्मुखता एकांतवासी एकाग्रता से सजाता है, एक नामी एक व्रता, व्यर्थ से एक नामी एक रस स्थिति, स्वमान में रहकर सबको सम्मान देना, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्माण नव निर्माण भाव, निर्वाण स्थिति है ना, निर्वाण माना वाणी से परे की स्थिति, निर्मल स्वभाव और सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारी बनाता है, वफादार बनाता है, ईमानदार बनाता है, फरमानबरदार बनाता है। तो ये बाबा जैसे हमें दैवी गुणों से सजाता है साजन के रूप में। साजन क्या करता है, पत्नी के लिए क्या लाके देता है, सिर का श्रृंगार लाके देता है, मस्तक का टीका लाके देता है, नाक में पहनने का, यहाँ का लाने का है ना, हाथों के कड़े, पैरों के कड़े लाके देता है, अच्छे अच्छे कपड़े लाके देता है। तो बाबा क्या करता है, हमारे आत्मा का श्रृंगार हमको ये दैवी गुण है उससे जाता है। सज्जन के रूप में जो आत्मा को कीड़े लगे हुए थे, कौन से, ये पांच कीड़े, कौन से लगे हैं कीड़े, पांच कीड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा में कीड़ा, आत्मा बीज है ना शरीर का, इसको कीड़े लगे हैं पांच कीड़े ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बीमारी लग गई आत्मा को है ना। और मन को भी कीड़े कौन से लगे, मन को 10 कीड़े जो दूसरे बताए ना, आलस, अलबेलापन, ये मन को लग गए, आलस, अलबेलापन, दूसरे को दोष, दूसरे में दोष निकालना, बदलने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, ये मन को लग गए। तो जड़ में कीड़ा लग गया, जड़ में भी कीड़ा लगा हुआ, और कहां पर, डाली, तने में भी कीड़ा लगा हुआ है, मन तना है ना, तो उसमें भी कीड़ा लगा। तो बाबा क्या करता है, उसको सज्जन के रूप में उस कीड़े को निकालता है ना, कीड़ा मारने की दवाई डालता है ना, क्या कीड़ा मारने की दवाई, मन मना भाव, ये मुरली और मन मना भाव, ये कीड़ा मारने की दवाई, तो इसको मतलब खत्म करता है। ठीक है, तो इस तरह से बाबा अंदर से ये सज्जन के रूप में ना, और बच्चे के रूप में मेरी देखभाल का जिम्मा लेता है। बच्चे तुम अभी तो बड़ा हो जाओ, कोई बात नहीं, मैं तेरी देखभाल करूंगा, 21 जन्म तेरे को देखभाल तेरी करूंगा। ठीक है, तो एक एक संबंध की अनुभूति हम करते हैं। तो इस तरह से जब हम करते हैं, बार 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 अभ्यास करते हैं, तो ये जो मैं क्या बता रहा था आपको, कहा था मैं, देखो कहां से कहां पहुंच जाता हूं, है जी, हाँ, कीड़ों की दवाई मनमाना वो तो मैंने बता दिया, उसके पहले टॉपिक कहां से शुरू किया था, हाँ? क्या करें, हाँ, तो मतलब ये जो एकांतवासी की बात चल रही थी, इस तरह से जब हम अंत अतिंद्रिय सुख की अनुभूति, तो ABCD में जब जा रहे हैं, डी फॉर ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, तो जब इसमें हमें क्या अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, बाबा और मैं बस, ABCD, तो ABCD जैसे होता है तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो क्या होता है, फिर जैसे ही हम लोग तीन संकल्प रह जाते खाली, ABC, ड्रामा भी पूरा हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है, काम खत्म हो गया, अब खाली रह गया आत्मा बाबा कनेक्शन। जब तीनों की स्मृति खाली रह जाती है तो हम कहां पहुंच जाते, सूक्ष्मतम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमें कोई बैठ के योग कैसे करना है, इसमें मैं योग की विधि भी आ रही है, इसमें योग कैसे करना है, योग हमको ऐसे नहीं करना है। योग का मतलब क्या है, योग का मतलब है हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन है ना। तो हमें क्या करना है, हमें कोई ऐसे नहीं कि सामने एक एक गास्केट लगी है, सामने बाबा का फोटो रखा है, ब्रह्मा बाबा का या मम्मा का साथ में रखा हुआ, और हम उसमें देख रहे हैं यूं करके, है ना, यूं करके देख रहे हैं, तो उसमें से किरणें आएंगी क्या आपके अंदर। अच्छा, आप कहीं ऐसी जगह पर बस में बैठे हैं, वहां पर भूकंप आ गया तो क्या करोगे, तो शिव बाबा का फोटो निकालेंगे, ऐसे रखोगे सामने, उसमें देखना शुरू कर देंगे, फिर योग लगाएंगे क्या, लाल लाइट जलेगी तब योग लगाएंगे क्या, नहीं, चलते फिरते उठते बैठते ये चिंतन चलना चाहिए अंदर। ठीक है, ABCD का, मैं आती सूक्ष्म ज्योति बिंदु, आती सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान, मेरे साथ संबंध कैसे, उसके साथ एक संबंध की अनुभूति, डी फॉर ड्रामा। तो जैसे से आप करते जाएंगे, आपका विचार आठ होंगे, तो आप क्या महसूस करेंगे, जैसे आप संसार के ऊपर से ऊपर उठ गए, और जब आप फील करेंगे, जब छह हो जाएंगे तो आप फील करेंगे सूर्य चांद तारों के बीच में, जब चार हो जाएंगे संकल्प तो आप क्या फील करेंगे, संसार के बिल्कुल बादलों से परे एकदम अंत में चले गए, जब तीन हो जाएंगे सूक्ष्मतम में पहुंच जाएंगे, तीन विचार बस इसमें खो गए। अब आप मनन करते करते आप कहां पहुंच गए, मनन चिंतन करते करते, मंथन करते करते आप मगन हो गए इसमें, तो एकदम आपको देह का भान भूल जाएगा। अच्छा, इसमें देह भान है क्या, एबीसी में देहभान है क्या? मैं आत्मा हूं, परमात्मा के साथ मेरे सब संबंध उसके साथ है, इसमें देह है कहीं? देह का संबंध है कहीं? देह का स्वभाव संस्कार है, देह का पदार्थ है क्या? तो देहभान खत्म हो गया, देह से एकदम न्यारे हो गए, आप कहां पहुंचे? सूक्ष्मतम पहुंच गए। ये दुनिया चार संकल्पों तक की दुनिया है, ठीक है? ये दुनिया कहां तक की दुनिया है? चार संकल्पों तक की दुनिया है। ये एबीसीडी तक की दुनिया है, एबीसी की दुनिया। जैसे एबीसी में पहुंचे, एबीसी में खो गए, आप सूक्ष्मतम पहुंच गए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, चलते फिरते उठते ऐसे करने की आवश्यकता। कई लोग ऐसे करके योग करते हैं, कई लोग यूं करके योग करते हैं, है ना? अब आप ऐसे कर खाना बनाओगे क्या? रोटी बनेगी ऐसे? कपड़े धोओगे ऐसे करके? गाड़ी चलाओगे ऐसे करके चलाओगे? ये मुद्रा बाबा ने बताई, मुद्रा लगा के योग करो, कभी बताया बाबा ये मुद्रा लगाता था क्या? फॉलो फादर करना ना, या कुछ और करना है? फॉलो रामदेव करना है, लंबा सांस खींचोगे फिर योग लगाओगे ऐसे, एक नाक से सांस निकालोगे, दूसरे से बाहर निकालोगे, फिर दूसरे से लोगे, फिर से योग लगेगा क्या? या पद्मासन लगा के योग? आपके घुटने खराब है, आप जिसके घुटने खराब हो तो योग लगेगा नहीं, उसका तो राजयोग कर ही नहीं सकता, परम धाम में जा ही नहीं सकता। ऐसे जिसकी टांग ही नहीं बेचारे की, वो तो परम धाम में जा ही नहीं सकता है ना, नहीं ऐसे? तो हठ योग नहीं, राजयोग है ना? ये मन और बुद्धि का योग है, बुद्धि का योग है और मन की याद है, बुद्धि से योग है और मन से याद है। अर्थात बुद्धि तो बाबा ने दे दी, दिव्य बुद्धि में ज्ञान डाल दिया, ये एबीसीडी का ज्ञान डाल दिया। अब मन में स्मृतियां जो है हमारी, मन में चार बातें, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। तो स्मृति में क्या भरा हुआ है? जो अभी तक देखा है, सुना है, बोला है, खाया है, इन हाथों से किया, वो स्मृति, वही हमारे पाप कर्म है। वृत्ति, स्मृति से वृत्ति बनती है, फिर वृत्ति हमारी कैसे होगी? सबके प्रति लगाव, झुकाव, टकराव की। जो मेरी महिमा करते हैं उनसे लगाव हो गया, झुकाव हो गया, और जो मेरे अगेंस्ट बोलते हैं वो टकराव, उनसे टकराव हो गया, है ना? फिर जो अच्छे लगते हैं उनके प्रति शुभ भावना है, बाकी सबके प्रति दुर्भावना है, ना? नहीं, तो फिर वृत्ति से भावना बनती है, तो वृत्ति फिर मेरी सबके प्रति, सबके जब एबीसीडी मेरी स्मृति में रहेगा तो वृत्ति सबके प्रति आत्मिक हो जाएगी। वृत्ति आत्मिक होगी तो भावना फिर सबके प्रति शुभ भावना हो जाएगी, नहीं तो दुर्भावना किसके प्रति शुभ भावना? जो मेरा है ना, बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माँ है, मेरा बाप है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, उसके तो सब कुछ दे दो, नहीं? और बेचारा एक गरीब आदमी, इसको रोटी खाने को नहीं, इसको एक रोटी नहीं दे सकते, नहीं? उसका इतने माँ बाप के, माँ बाप बूढ़े हुए बेकार हो गए, उनके क्या करने का, उनको छोड़ो, अभी बच्चे के लिए करो। आज के समाज में ये तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ये? तो ये जो है हमारी वृत्ति भावना और संकल्प, संकल्प से जैसे शुभ भावना हुई, संकल्प श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली और कल्याणकारी है। तो मन में जो हमारे अभी गलत वृत्ति हो गई है, देहिक वृत्ति हो गई, देह के संबंधों की वृत्ति, देह के स्वभाव संस्कार की वृत्ति हो गई है, स्मृति वही है, चार बातें अभी बुद्धि में स्मृति में भरी है, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ भरे हुए स्मृति में। थोड़ा सा कुछ उनको डिस्टर्ब होता है, थोड़ा सा भी बच्चा बीमार हो गया, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई संबंध में, स्वभाव संस्कार में, पदार्थ में, तो क्या होता है? बेचैनी पैदा हो जाती है, विचार बहुत तेज चलने लगते हैं, चिंता भय पैदा हो जाता है, विचारों की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, गुस्सा आने लगता है, नहीं, विकार जन्म लेते हैं, इससे फिर विकार जन्म लेते हैं। तो ये स्मृति को परिवर्तन करना है अभी हमको, स्मृति में अब एबीसीडी डालना है, वृत्ति को आत्मिक बनाना, वृत्ति अभी देह की वृत्ति है, भावना दुर्भावना शुभ भावना डिपेंडिंग ऑन फिजिकल बेनिफिट्स, और फिर संकल्प उसी अनुसार चलते हैं, बहुत तेज स्पीड के संकल्प चलते हैं। तो अभी हमको स्मृति, अभी हमको क्या करना है? बुद्धि से योग लगाना है, बुद्धि में अभी हमको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि से निकालना पड़ेगा, बुद्धि में भी ये फंसा है, देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, फंस गए, बुद्धि में जाके फंस गए, दिल में जाके फंस गए, अब उनको निकालो, क्योंकि परमात्मा के भी महावाक्य हैं, परमान है बाबा का। बच्चे देह, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों को बुद्धि से भूल, पहले ही चार बातों को भूलो, बुद्धि से निकालो, फिर अपने को आत्मा समझो, अर्थात फिर अपने को आत्मा समझ पाओगे, नहीं तो आत्मा समझ नहीं सकते। फिर मां में कम याद करो, अर्थात फिर शिव बाबा हमारी बुद्धि में आ जाएगा, दिल में आ जाएगा, ये सच्ची दिल होगी, इस दिल में दिलाराम आके बैठेगा, फिर बाबा उसमें आएगा तो फिर आके हमारा ये हमारे विक्रम विनाश जो मेमोरीज है ना स्मृति में, ये मेमोरीज डिलीट होनी शुरू होगी। इसने ऐसा किया, ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे को ये मेरे को बहुत देता है, ये मेरे को ऐसा करता है, ये मेरे को बहुत जरूरी है, इससे मेरे को इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, है ना। ये जो अंदर से जो भरा पड़ा है, स्मृतियां भरी पड़ी, वृत्ति भरी पड़ी, भावना संकल्प डिलीट होते जाएंगे। जैसे स्मृति डिलीट होंगी वैसे से वृत्ति भावना संकल्प बदलते जाएंगे, फिर मन में याद टिकेंगी। तो मन मन मना भव है ना, मन मना भव ना, मन को स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प को बाबा में लगा दो, चारों में बाबा को भर लो, तो ये मन मना भाव है, तो तब हमारे अंदर इतनी सुख की अनुभूति होती रहेगी। बाबा ने कहा झूले में झूलते रहो, शांति के झूले में, प्रेम के झूले में, अत्यंत सुख के झूले में झूलते रहो, तो तब वो झूला झूल, फिर दो की जब स्थिति आएगी, दो तो तीन में मना आप सूक्ष्मतम में पहुंच गए, और फिर दो मना आनंद, आनंद मना बाबा की गोद में पहुंच गए, मैं और बाबा, बस ए और बी, मैं बाबा का, बाबा मेरा, दो की स्थिति ऐसी जब बाबा की गोद में पहुंच गए, ठीक है, पहुंच गए बाबा की गोद में, ऐसे हम बोलते रहते मैं बाबा का, बाबा मेरा, पर इस प्रोसेस से जाओ आपको फील होगा जैसे दो संकल्प रह जाएंगे सब संबंध एक में समा जाएंगे तो बाबा की गोद में पहुंच गए, फिर बाबा से अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, फिर बाबा से बातचीत कर सकते हो, बाबा मेरे अंदर ना ये कमी है, थोड़ी सी कमी बस ये है बाबा, ये आप मेरे कभी कभी चिंता ये वाली बात आती है, बाबा को बताएंगे, तो फिर बाबा, फिर ये भी खत्म हो जाएगा, आत्मा भी खत्म, खत्म नहीं मतलब कोई ऐसे नहीं, आत्मा विनाश नहीं हुई, अभी बाबा आत्मा, आत्मा बाबा के सागर के साथ का वरदान था ना, सागर और नदी, सागर और गंगा, गंगा सागर, ये मिलने का समय है, गंगा सागर से अलग नहीं, सागर गंगा से अलग नहीं, है ना, ये वो स्थिति, खाली बाबा, बाबा बस, खाली बाबा, फिर ये स्थिति जब रहेगी खाली बाबा, बाबा में लवलीन हो गए, लव लव में लीन हो गए, आपको जरा भी कुछ भान खत्म हो गया, तथा सूक्ष्म शरीर माना सूक्ष्म ये संकल्प भी खत्म हो गया, सूक्ष्म शरीर माना संकल्प, शुद्ध संकल्प, एबीसी, मैं आत्मा, परमात्मा के संतान, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से, ये है हमारा सूक्ष्म शरीर, लाइट की बॉडी, इसमें जरा बोझ है क्या, इसमें एबीसी में बोझ है क्या, कुछ है? कुछ अंधेरा है क्या, डार्कनेस है क्या, एबीसी माना लाइट, और खाली एबी माना उससे भी ज्यादा लाइट, और बाबा माना अखंड ज्योति, है ना, तो बाबा माना अखंड सदा जागती ज्योत, है ना, तो खाली जब बाबा रह जाता तो हम कहां पहुंच जाते हैं, तो ये जो सूक्ष्म बताना वो एक से तीन संकल्पों की दुनिया है, कितने संकल्पों की दुनिया है, एक से तीन संकल्पों की दुनिया, ठीक है, जहां आवाज नहीं है, सिर्फ संकल्पों की भाषा है, शुद्ध संकल्पों की भाषा, वहां जाके कोई अशुद्ध संकल्प नहीं आ सकता, शुद्ध संकल्पों की भाषा है, बाबा से संकल्पों द्वारा बातचीत होती है, और जब खाली एक संकल्प बाबा के लव में लीन हो गए, एक से भी खत्म, एक का भी पता नहीं, कोई संकल्प सिर्फ बाबा ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ बिंदु है, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, बस बिंदु बस, तो परम धाम में पहुंच गए। और ये जो स्टेज है परम धाम की, तो ये एक से तीन संकल्प वाली स्टेज है फरिश्ता स्टेज, ठीक है, आठ से चार वाली स्टेज क्या है, सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति या अशरीर स्थिति या देही मन स्थिति, छह से नीचे वाली स्थिति देही मन स्थिति, और सात और आठ की स्थिति हो गई अशरीर स्थिति, और फिर छह से लेकर के चार तक की स्थिति हो गई देही मन स्थिति, और फिर उसके बाद तीन से लेकर के एक तक की स्थिति फरिश्ता स्थिति, और फिर एक से भी कम परम धाम, बस मैं ज्योतिबिंद, ये फील से इसकी भी फीलिंग खत्म, संकल्प ही खत्म, नो थॉट्स, संकल्प से परे चले गए, बस परमानंद परम शांति, विचार एकदम खत्म हो गए, वो स्थिति जहां विक्रम विनाश होते हैं, वो है ज्वालामुखी स्थिति, ये है ज्वालामुखी योग, तो ये ज्वालामुखी हो गया, मतलब ज्वालामुखी माना जिसमें विक्रम विनाश नष्ट हो, विक्रम माना हमारे जो भी मेमोरीज है ना ये सब डिलीट, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वो ऐसा, आज ये ऐसे हो गया, वो वैसा हो गया, वो सब खत्म, वो डिलीट होने शुरू होते, फाइलें डिलीट, सारी फाइलें डिलीट। इसके रिजल्ट क्या होंगे? आप जब दिन में मिले व्यक्ति को देखते हैं ना, जो व्यक्ति आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनको देख के आपको गुस्सा आता है, उनको देख के आपको कोई विकार जागृत होता है। आज उससे मिलेंगे ना, आपको याद ही नहीं आएगा वो बात, मुस्कुराएंगे उसको, बोले वो सामने वाले गाली आज भी देगा कि तो आप मुस्कुरा रहे होंगे, उसका आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब भव्य विक्रम विनाश हो गया। कल ज्यादा गुस्सा आया था, आज कम आया, मैं थोड़ा सा विक्रम विनाश हुआ, राइट। तो ये स्थिति, एक से कम संकल्प की स्थिति, जैसे आदमी कोमा से उठता है ना, कोई कोमा में बहुत लंबा समय कोमा में तो क्या उठता है, तो क्या बोलता है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है ना, ये सब मेमोरी डिलीट हो जाती है। क्योंकि जितनी भी फाइलें हैं, ये सारी सारी फाइलें फ्रीक्वेंसी पे यहां जमा होती है, फ्रीक्वेंसी पे जमा होती है। जैसे चिंता की फाइल कहां जमा होती है, 20 पर, डर की फाइलें 25 के आसपास, चिड़चिड़ेपन की फाइलें 25 30 के आसपास, गुस्से की फाइलें 35 के आसपास, किसी को मारने की जोर से मतलब किसी को हिट करने की फीलिंग 40 के आसपास है, 45 में ना पागलपन की फाइलें, ठीक है, 45 के ऊपर। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की फाइलें सारी 30 के बाद जमा होती है, 31 के बाद, है ना, 30-31 के बाद, है ना। तो फाइलें जो हमने जो जमा की उसके अनुसार वो फाइलें हाई फ्रीक्वेंसी की फाइलें डिलीट होने लगती हैं जब आप एक के नजदीक पहुंचते हैं, एक से कम होते हैं तो, राइट। तो धीरे धीरे पहले तो क्या फाइलें डिलीट होंगी, 31 मतलब 40-45 वाली फाइलें डिलीट होंगी हाई फ्रीक्वेंसी वाले, फिर धीरे धीरे 40-38 वाली, 35 वाली, है ना, फिर 32 वाली, फिर 30 वाली, फिर देखेंगे गुस्सा आता ही नहीं मुझे अभी तो, पहले बहुत गुस्सा आता ही नहीं, फाइलें डिलीट होगी ना, फिर अभी थोड़ा और योग लगाते जाएंगे, योग लगाते जाएंगे, धारणाओं में चलते जाएंगे, तो क्या होगा धीरे धीरे फिर आपकी उस तेजी क्या बन जाएगी, आपकी और फाइलें डिलीट, 25 वाली फाइल भी डिलीट हो जाएगी, अब डर लगता ही नहीं, चिड़चिड़ापन में नहीं आता, कोई कुछ मर्जी कहता रहे, है ना। फिर धीरे धीरे चिंता वाली फाइल, वो 20 वाली फाइलें भी डिलीट हो जाएंगी, है ना, फिर धीरे धीरे 15 वाली फाइलें भी डिलीट हो जाएंगी, फिर 12 वाली फाइलें भी डिलीट हो जाएंगी, फिर 10 वाली फाइलें भी डिलीट होते जाएंगी। तो लंबा समय लगेगा पुरुषार्थ अभ्यास करते, पहले बताया ना अभ्यास, पहले बताया ना अभ्यास। तो ये ज्ञान की गहराई, ये योग की गहराई में जाओ, ज्ञान माना ये गहराई है, ये योग की गहराई है, इस तरह से योग की गहराई में जाओ। फिर क्या बताया था उसके बाद, अभ्यास, ये अभ्यास बार बार करते हो, फिर संपूर्ण पवित्रता भी आती। संपूर्ण पवित्रता क्या है, फिर हमारी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क संबंध एकदम से जब बार बार करेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होने वाला, योग की शक्ति आती जाएगी, जो साक्षी होकर देखते जाएंगे, फंसेंगे नहीं, वह संकल्प चलेंगे नहीं, जो पांच स्टेप बताए थे ना मैंने, पांच जो बातें बताई थी, तो ये संपूर्ण पवित्रता, फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति आती जाएगी इस अभ्यास से। बार बार एबीसीडी कर रहे, एबीसीडी कर क्या होता है, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थों से अपने आप ही डिटैच होते चले जाएंगे अभ्यास करते करते। तो इस तरह से हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पांच बातों से हमारी स्थिति, धीरे धीरे हम स्थिति में आगे बढ़ते चले, ठीक है ना। तो इस तरह से जब हम रोज, और बेस्ट समय है अमृत वेला, ऐसे करने को तो पक्के योगी तो किस समय भी कर सकते हैं, किंतु शुरुआत हम कर रहे हैं तो हमारा अमृत वेले का समय बचा, उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जब उठते हैं ना हम तो हमारी फ्रीक्वेंसी 4 होती है, बाबा को अपने को आत्मा समझ के परमात्मा शिव को गुड मॉर्निंग करो, बाप दादा गुड मॉर्निंग की, मुंह हाथ धो ब्रश करो बैठ जाओ, ये एबीसीडी को रिवाइज करना शुरू करो और बस चले जाओ, पहले बताया ना कहां पहुंच जाओ, सूक्ष्म वतन में 4-3 पे और फिर 2 पर बाबा की गोद में, बाबा से 2 बात की, परमधाम विक्रम विनाश करते जाओ, फिर बाबा गोद में आ जाओ, फिर वापस से ऊपर चले जाओ, है ना। ये ड्रिल, फरिश्ता स्थिति बीज रूप स्थिति, फरिश्ता स्थिति बीज रूप स्थिति, बार 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 लंबा समय टिको ऊपर, है ना। पर ये अभ्यास कौन कर पाएगा, ये ज्वालामुखी स्थिति, जो सारा दिन ज्ञान के में डूबा रहेगा, बताया ना भट्टी माना सारी रात दिन रात उसमें डूबा रहेगा, ज्ञान में डूबा रहेगा, बाबा की मुरली में डूबा रहेगा, है ना। तो इसके चार नियम और चार मर्यादाएं हैं। बाबा ने चार गोलियां दी और चार परहेज दिए हैं जल्दी से इस परिश्रा स्थिति को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए संपूर्ण स्थिति संपन्न और संपूर्ण स्थिति हमारी आ सके, इसके लिए चार परहेज, चार नियम है। अमृत वेला, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, ठीक है। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, मुरली क्लास में जाके, बाबा की संघ और वातावरण का बड़ा महत्व है क्लास में जाके मुरली सुनने का। ऐसा नहीं घर में बैठ के मुरली पढ़ ली, इंटरनेट पे मुरली पढ़ ली, टेलीफोन पे सुन ली, नहीं। अगर बाबा के लिए आपके पास समय है तो बाबा के पास भी आपके लिए समय है। सारे काम छोड़ के पहले बाबा की मुरली सुन के आओ, सेंटर पे सुन के आओ। चार से पांच बाबा को याद करो, पांच बजे से कुछ पिछले दिन की मुरली रिवाइज कर कागज पे नोट करके लाए हो उसे रिवाइज कर लो, है ना। फिर उसी 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 चिंतन में स्नान करो, शेव बनाओ, जो भी करते हो उसमें तैयार करके फिर आधा घंटा से पौना घंटा शेयर करो, बाबा की याद में ही शेयर करो। फिर सात से आठ मुरली, आठ बजे तक किसी कुछ बातचीत मत करो, मुरली के अलावा कुछ और सोचो मत, कुछ पढ़ो मत, फिर मुरली, फिर अटेंशन, उसके बाद फिर उसके बाद सोने के पहले फिर साधन बीच बीच में बाबा की मुरली, हर घंटे आधा घंटे में बाबा की मुरली निकालो, कम से कम 21 बार बाबा की मुरली रिवाइज करो। सारी मुरली नहीं, दो दो लाइन बाबा के बीच में मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन, कुछ कुछ अच्छे पॉइंट अंडरलाइन किए हों या पे नोट किए हों, रिवाइज करो। फिर सोने के पहले पोता लेटर लिखो बाबा, कचहरी करो, मन बुद्धि संस्कार पांचों कर्म इंद्रियों की। आज कहां तुमने मन, तुमने कहां गलती की, बुद्धि कहां गलती की, संस्कारों में कहां से गलती हो गई, कर्म इंद्रियों में कहां गलती की, लिखो, उनसे हालचाल पूछो, कोई वार्निंग दो, गाइडलाइन दो, कैसे चलना है। चलिए दो मिनट चलो, पूरा करने के नजदीक है बस। शांति। तो ये जो आपने बताया अमृत पेला, मुरली, और मुरली का सात स्टेप है वो सविता दीदी आपको बताएंगी, नीमच वाले सविता दीदी आपसे एक बार उनसे डिस्कस हुआ था। सात स्टेप है, श्रवण मना सुनना, मनन, चिंतन, मंथन, और फिर सिमरण, और लास्ट में स्मृति स्वरूप। ये सात स्टेप है मुरली के, सारा दिन उस पर, अगली मुरली सुनने से पहले नेक्स्ट डे ये सात स्टेप में उसका स्मृति स्वरूप बन जाना चाहिए। और सोने के पहले कचहरी, चार्ट भरना, फिर बाबा की गोद में सो जाना। हमारा बेडरूम सूक्ष्म वतन है और बेड बाबा की गोद, वहां जाके सोचा है ना। तो चार ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण ये चार चीजें जरूर करता है। और चार परहेज हैं, मर्यादाएं कहो, परहेज करो, पवित्रता, पवित्रता माना मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता, व्यर्थ संकल्प करना भी पवित्रता, ये ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, वो उनका पार्ट वो जाने, वो ड्रामा में बाबा डायरेक्टर जाने, हमें नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपने स्वचिंतन स्वदर्श में रहना। तो ये जो है स्थिति, जितनी पवित्रता की डिग्री बढ़ती है उतना बाबा से कनेक्शन बढ़ता जाएगा, उतनी हमारी योग की स्टेज बढ़ती जाएगी, उतनी लाइट हमारे अंदर आती जाएगी। अगर मेरी 15% पवित्रता है तो 15% लाइट, 15 वाट की लाइट आएगी, 60 वाट की लाइट, 60% पवित्रता, 60 वाट की लाइट आएगी, 100 वाट की है तो 100 वाट की, 1000 वाट जितनी है तो 1000 वाट जितनी। तो जितनी पवित्रता बढ़ेगी उतना। फिर दूसरा शुद्ध अन्न, जितना शुद्ध अन्न हमारा होगा, अर्थात बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, उतना ही हमारा बाजार का खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, बिस्किट खाना, ये तो मशीन का बना हुआ है, आइसक्रीम खाना, ये सब अपने मन को भुलाने वाली बातें हैं। बाजार की ब्रेड तो मशीन से बनती है, वो आटा करने वाले कौन, मशीन में डालने वाले कौन, वो लोग खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना, नहीं, बस सिंपल बिना आसक्ति खाओ, बाबा की याद में खाओ। शरीर के लिए क्या चाहिए, जीप को क्या चाहिए, सिंपल से दो रोटी चाहिए सुबह दोपहर शाम, बैलेंस्ड भोजन ना, कोई हमें नेचुरोपैथी करने की आवश्यकता, दो रोटी सब्जी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दो से ज्यादा खाने की आवश्यकता भी नहीं है ना। कोई पकोड़े खाने की आवश्यकता है क्या, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक करनी तो भले पकोड़े खाओ, मिठाई खाओ, नहीं ब्लॉक करनी तो वह सिंपल खाना खाओ ना, ब्लड प्रेशर डायबिटीज भी नहीं होगी। तो इस तरह सिंपल भोजन है ना, शुद्ध सात्विक, शुद्ध माना बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला, पराठा पकौड़ा पकौड़ा समोसा माना ये तात्विक भोजन है, तामसिक माना बासी भोजन, लहसुन प्याज, जैसे भोजन तामसिक भोजन, उससे उत्तेजना पैदा, काम विकार जागृत, क्रोध लोभ मोह अहंकार जागृत होगा। तो शुद्ध अन्न सत्संग, सत्य एक साथ शिव बाबा है और एक मुरली उसकी सत्य है, तो बाबा का संग, बाबा की मुरली का संग। मुरली हमेशा कहां रखनी चाहिए, लव लेटर है ना बाबा का, कहां रखते हैं लव लेटर, कहां रखते हैं बताओ, दिल के पास रखते हैं ना हमेशा। और दिल कैसे, लव लेटर दूसरों को दिखा के पढ़ते हैं क्या, छुपा के पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं मुस्कुराते हैं फिर अंदर जेब में रख लेते हैं, फिर एक लाइन देखते हैं फिर उसको छुपा के, ऐसे छुपा के उंगली में छुपा के पढ़ते हैं ना, ये गुप्त पुरुषार्थ है ना। तो बाबा की एक ही लाइन पढ़ो फिर अंदर से मुस्कुराओ, उसमें अंदर अंदर मुस्कुराओ बाबा के साथ, उसका मजा लो है ना, आनंद लो, तो फिर जिम में रखो है ना। दिन में 20 बार 21 बार हमें भाग्य लेना राज्य का, तो 21 बार कम से कम मुरली के पॉइंट रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। कितनी बार, ज्यादा बार नहीं, 10 बार तो 10 जन्म है ना, 21 बार कम से कम है ना, 21 बार उसको करो। और फिर दैवी गुणों का व्यवहार, हमारे व्यवहार में दैवी गुण, सत्यता, सरलता, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, एकाग्रता, इस तरह से ये अभ्यास, सरलता, नम्र, जो बताया ना दैवी गुणों की लिस्ट बताई थी मेरे पीछे, वो सारे उनमें व्यवहार करो, दृढ़ता, निर्भयता, सहनशीलता, सबसे मीठा बोलना, संतुष्ट रहना, मुस्कुराते रहना, आज्ञाकारी बन के रहना, वफादार बन के रहना, संबंधों में वफादार ईमानदार बन के रहो, बाबा से तो रहना है परिवार में भी ईमानदार सम्मान बढ़ता है, ठीक है। तो जब इस तरह से हम चलेंगे, सबको सम्मान देंगे, तो हमारा क्या होगा योग, ये चारों चीज से फिर हमारा अमृत वेला, ये चार चीज अमृत वेला, सॉरी पवित्रता, शुद्धन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना ज्यादा मुरली हमारे अंदर रिकॉर्ड होगी, उतना ज्यादा फिर सारा दिन इस मुरली में एब्जॉर्व, ज्ञान में एब्जॉर्व रहेंगे, ज्ञान बार बार ऑटोमेटिक बुद्धि में आता जाएगा, उतना अधिक सोने के पहले अच्छा कचहरी करेंगे मन बुद्धि संस्कार की, उतना अधिक अच्छा चार्ट सच्चाई से भर पाएंगे, उतना अधिक बाबा के गोद में सो पाएंगे, राइट। और जब ये स्थिति हमारी होती जाएगी तो पहले 5 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से दोबारा बता रहा हूं, ज्ञान की गहराई, योग की गहराई उतनी बढ़ती जाएगी, अभ्यास उतना गहरा होता जाएगा, और संपूर्ण पवित्रता बढ़ती जाएगी, बेहद की वैराग्य वृद्धि बढ़ती जाएगी। और उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या बताया था, अंतर्मुखता, एकांतवासी, उतना अधिक हम एकांतवासी, एक अकेले बैठे बैठे मुस्कुराते हैं, कृष्ण को दिखाते ना बैठे बैठे, विष्णु को दिखाते हैं मुस्कुरा रहा है ना, सब कुछ देख रहा है साक्षी होकर, उतना साथी और साक्षी की स्थिति बढ़ती जाएगी, और अपने विक्रम विनाश होते रहेंगे, हम लोग एकदम से सदा मुस्कुराते रहेंगे, कभी ज्ञान के झूले में झूल रहे हैं, कभी पवित्रता का झूला, शांति का झूला, रूहानी प्रेम का झूला, अतिद्रिय सुख का झूला, आनंद का झूला, शक्तियों का झूला, एक एक शक्ति के झूले में, 8 शक्तियां ना, एक एक झूले में झूलते रहेंगे ऐसे बस। और हमारी जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ना, एक दो रह जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, तो हमें सत्यु के सीन सीनरी अभी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अंत में क्या होगा, आपको सीन सीनरी वो फाइलें खुल जाएंगी हमारी सीनरी सत्यु की, सत्यु में ना हम 1-2-3 की फ्रीक्वेंसी में सत्यु में रहते थे, वो फाइलें खुल जाएंगे, यहीं बैठे बैठे सीन दिखाई देते हैं सत्यु में, हम शरीर से यहां बैठे होंगे, इधर विनाश हो रहा होगा, हम सत्यु में बैठे होंगे, लोग करेंगे हाय हाय, हम करेंगे वाह वाह। तो ये ज्वालामुखी योग के द्वारा, इस तरह से ज्वालामुखी एक स्थिति है, इस अभ्यास से पहुंचते 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 ज्वालामुखी योग, माना एक बाबा, मेरा बाबा, ये स्थिति है ज्वाला, एक ही संकल्प, इसी में स्थित रहना, ये है ज्वालामुखी। ओम शांति। 2 मिनट बाबा ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है,
मैं समझती हूँ कि जो आपने परिवर्तन के लिए ब्लीचिंग का प्रोसेस बताया, तो आज हो तो कर ही ले, जो भी अंदर कपड़े को कालापन लग गया है 63 जन्मों का, तो जो भी मन में, बुद्धि में, कहीं ना कहीं स्मृति में, कहीं ना कहीं किसी कोने में है, तो आज उसे एक पेपर पर लिख करके बाबा को जरूर रात्रि को बाबा के बॉक्स में डाल दे, और आप उसमें अपनी वो मन की जो सारी इस तरह की बातें जो ज्वालामुखी योग लगाने में बाधक हैं, उन बातों को लिख करके एक बार बाबा को तो समर्पित कर ही दे, ताकि इस भट्टी के रंग में पूरी तरह से रंग कर हम अपने अपने जब स्थानों पर जाएं, तो उस भट्टी की छाप अनेक आत्माओं को लगा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई, आपने बहुत ही सुंदर रीति से बहुत अच्छी तरह से बिगिनिंग से लेकर के सारा स्पष्टीकरण किया, जिसका सभी को बहुत अच्छा लाभ हुआ होगा। एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ।